हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। आज बहुत ही पवित्र और पावन दिवस है, श्री गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन। और कलयुग की जो पतित अवस्था है उसको देखते हुए परम भाग्य का दिन है, क्योंकि कलयुग का जितना भयंकर दुर्भाग्य है उतने दुर्भाग्य को नष्ट करने का परम भाग्यवान जो कार्य है वो भगवान ने किया है। ऐसी करुणा और कृपा का वर्षाव भगवान ने किया है कि कोई भी कलयुग का महत्तम से महत्तम पाप भी जो है वो इनके कृपा और करुणा के वर्षाव के सामने टिक नहीं सकता है। ऐसे उन्होंने परम करुणा आज के दिन की है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, हम एक्चुअली हमारी सीमित बुद्धि से ये विचार नहीं कर सकते हैं, अंदाज लगा नहीं सकते हैं कि कितनी करुणा हम पर हुई है। जैसे कभी हम किसी धनी व्यक्ति को पूछते हैं, जो भारत के सबसे धनी व्यक्ति को पूछेंगे आपकी धन दौलत कितनी है, तो वो कहेगा कि मुझे एक महीना लगेगा बताने के लिए। और एक महीने के बाद जब बताएगा इतना इतना फिगर है, तो कहेगा कि अब एक महीने के बाद चेंज भी हो गया रहेगा। तो एक अगर विश्व के एक सामान्य धनी व्यक्ति के धन की पूरी कल्पना हमको नहीं मिल सकती है, समझो, तो भगवान की करुणा का अंदाज कैसे लगा सकते हैं। भगवान की करुणा का विस्तार और उनकी गहराई और उनकी जो क्या कहते हैं मैग्नानिमिटी, उनको जो करुणा की कृपा है उसको कैसे समझ सकते हैं। इसलिए हमको तो केवल धन्यवाद ही करना चाहिए कि हम लोग कलयुग के जीव हैं, और कलयुग के जीव कितना भी कोशिश करेंगे, अगर अनुभूति भी होगी कि हम लोग पतित से पतित हैं और हमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और परम हमारी परम शक्ति, हमारी जितनी भी शक्ति है उसको उपयोग करके परम साधना करेंगे हमारी शक्ति के अनुसार, फिर भी वो भगवान को प्राप्त करने की दिशा में एक तुच्छ कण भी नहीं हो सकता है। हमारी सर्वोत्तम साधना और हमारा सर्वोत्तम प्रयास जो है वो भगवान को प्राप्त करने की मार्ग में एक तुच्छ भी अचीवमेंट नहीं है, प्राप्ति नहीं है। इतनी भगवान की कृपा अगाध है। और आज का वो दिन है जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु इस विश्व में अवतरण हुए, इसकी बहुत सारी भूमिकाएं हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो जिन्होंने चैतन्य चरितामृत का लेखन किया है, वो विस्तार पूर्वक उनके आने के तीन बाह्य कारण और तीन अंतरंग कारण बताते हैं। बाह्य कारण ये है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, जो उन्होंने तो विनाशाय दुष्कृताम तो किया नहीं, लेकिन दुष्कृति का नाश किया, दुष्कृतों का नाश नहीं किया, दुष्कृतियों का नाश किया, दुष्कृति प्रवृत्ति का नाश किया, लेकिन धर्म संस्थापनार्थ, यानी जो कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसको स्थापन करने के लिए। और एक कारण है कि अद्वैत आचार्य और श्रीवासाचार्य हरिदास ठाकुर, इनकी पुकार को प्रतिसाद देने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया। और अंतरंग कारण उसके ऐसे हैं, हम लोगों को चैतन्य चरितामृत जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में जिस प्रकार से कृष्ण का वर्णन किया गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताती भी हैं कि गौरांग महाप्रभु के गौरव को समझाने के लिए मैंने कृष्ण के गौरव का विस्तार से वर्णन किया है, ऐसे बताते हैं। और फिर कृष्ण स्वयं उनका संभाषण उसके अंदर है, उनका जो अंतरंग मंतव्य है जो केवल शुद्ध भक्तों के हृदय में प्रकाशित होता है और कहीं जगह प्रकाशित नहीं होता है, कृष्ण का अंतरंग मंतव्य। उसमें कृष्ण अपने अंदर की बात कह रहे हैं कि मुझ में ऐसी क्या चीज़ है जिसमें राधा रानी इतनी आकर्षित हो जाती है, वो मुझे समझना है। और राधा रानी को क्या आनंद मिलता है मुझसे प्रेम करने से, क्या अनुभूति प्राप्त होती है, वो मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब हमारा प्रेम का संबंध होता है तो दोनों को आनंद होता है, लेकिन जो उनको आनंद की प्राप्ति होती है वो मैं जानता हूँ कि मुझसे हजारों लाखों गुना अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। और मैं जब तक राधा रानी नहीं बनूंगा या उनका भाव नहीं ग्रहण करूंगा तब तक उनको जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो मुझे अनुभूति नहीं हो सकती है। और तीसरा है कि क्या वो प्रेम है राधा रानी का, ये अलग अलग चीज़ें हैं। क्या वो प्रेम राधा रानी का है जो वो मुझ पर करती है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं राधा रानी पर प्रेम करता हूँ तो मेरा जो उनका प्रेम है वो मैं समझता हूँ, लेकिन उनका जो मुझ पर प्रेम है वो केवल वही जानती है। तो एक राधा रानी का प्रेम की महिमा, वो प्रेम करने के बाद उनको जो अनुभूति होती है उन अनुभूति का रहस्य समझने के लिए, और मैं मेरा क्या गौरव है, मैं जानता हूँ अनलिमिटेड असीम गौरव है लेकिन वो क्या है मुझे पता नहीं है, जो वो जानती है। तो ये तीन अंतरंग कारण है उनके प्रकट होने के। इस राधा कुंड का जब निर्माण हुआ तो भगवान ने इसी प्रकार के वरदान दिए, इसी प्रकार के सेम, कि जो राधा रानी को प्रेम मेरे लिए है वो प्रेम उसको प्राप्त होगा जो राधा कुंड में स्नान करेगा। मुझे राधा रानी जितनी प्रिय है उतना वो प्रिय हो जाएगा, और राधा रानी के लिए मेरे मन में क्या आकर्षण है वो उसे प्राप्त हो जाएगा। ये तीन वरदान उन्होंने वहां पर दिए, और राधा कुंड चौथा वरदान भी दिया कि राधा कुंड विश्व का सर्वोत्तम पवित्रतम स्थान होगा, हाईएस्ट ऑफ ऑल होली प्लेसेस। तो ये जो रहस्य की बातें हैं, हम सब लोग बड़े भाग्यवान लोग हैं क्योंकि विश्व में बहुत सारे कृष्ण के भक्त हैं। हम लोग खाली हरे कृष्णा में कृष्ण की भक्ति नहीं करते, बहुत सारे संप्रदाय हैं और बहुत सारे अलग अलग विभाजित संप्रदाय हैं, जिन शाखाएं हैं जिसमें कृष्ण की भक्ति का पालन होता है। लेकिन ये जो रहस्य है कि वो केवल गौरांग महाप्रभु के संप्रदाय में प्रकट हुआ है, वो केवल गौरांग महाप्रभु की कृपा से प्रकट हुआ है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में प्रकट हुए, उन्होंने उसमें अपना अनुग्रह स्वीकार किया, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पश्चात ये रहस्य का भेद हुआ है। माधवेंद्रपुरी ने उस रहस्य के अभेद करने का शुरुआत किया, राधा रानी के तत्व को उन्होंने प्रस्तुत किया और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको विकसित किया और स्वयं ही ऐसे अद्भुत रूप में आए, वो भी एक रहस्य है, स्वयं में अपने अपने रहस्य हैं। और फिर उन्होंने जो प्रकाश किया कि कृष्ण का हृदय, कृष्ण का की हृदय संजीवनी राधा रानी है, कृष्ण के अस्तित्व का सपोर्ट आधार राधा रानी है, कृष्ण के अस्तित्व का सर्वस्व राधा रानी है, इस तत्व को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया और उसका फिर विस्तार पूर्वक वर्णन हमारे छह गोस्वामी ने किया। इसलिए कहते हैं रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुते, जब तक रूप और रघुनाथ गोस्वामियों के चरणों का आश्रय हम नहीं ग्रहण करते, उनके द्वारा बताए गए शास्त्रों का जब तक अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक ये श्री वृंदावन धाम का रहस्य, राधा कृष्ण का रहस्य हमको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो परंपरा हमारी है इसमें हम लोग जुड़े हुए हैं, मतलब हम लोग जुड़े नहीं हैं, हमको जोड़ा गया है। हम लोगों का, हमने कोई तपस्या नहीं किया है, कोई जंगल में हिमालय में एकांत में जाकर एक गाजर नहीं खाया हमने दिन में एक बार, कुछ नहीं किया हमने। एक्चुअली हम लोग हमको सोचना चाहिए कि वैसा गुरु की प्राप्ति के लिए जीवन के रहस्य को, लक्ष्य को ढूंढने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया है, कोई ऐसा तपस्या नहीं किया है। हमारे अंदर जिज्ञासा थी लेकिन उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो नेत्र दीपक हो, लेकिन फिर भी इसी को हम समझ सकते हैं कि अकारण कृपा का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉजलेस मर्सी। इसी को अकारण कृपा कहते हैं, बिना किसी कारण के हमारे पर हो रही है। और यही अकारण कृपा का संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु का। तो सब लोगों पर अकारण कृपा कर रहे हैं। दीन हीन याता चीलो हरिनामो उद्धाली रो उद्धारी लो, तारंत साक्षी जगाई मदाई। कि सबसे दीन और हीन है, तपस्या तो छोड़ दो, प्रयास छोड़ दो, जिज्ञासा भी छोड़ दो, सुकृति भी छोड़ दो, कुछ भी नहीं है, फिर भी कृपा हो रही है। और ऐसी कृपा हो रही है कि अनर्थ निवृत्ति, पाप निवृत्ति और प्रेम प्राप्ति एक साथ में तत्क्षण हो रहा है। इस प्रकार का जो अकल्पनीय, हाँ, इनकंसेबल जो कृपा है वो इस संप्रदाय में उपलब्ध है। इसलिए हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने पिछले साल दीक्षा ली होगी, कई लोगों ने 10 साल पहले ली होगी, कई लोगों ने 25 साल पहले ली होगी, कई लोगों ने 35 साल पहले ली होगी। और हो सकता है कि कालांतर में हमने सब कुछ वी मस्ट हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, हाँ अभी दीक्षित हो गए अभी क्या है। लेकिन बार बार लगातार कम से कम दीक्षा के वर्धापन दिन पर या कम से कम उत्सव के दिन पर हमको इस भाग्य का रिविजन करना चाहिए, उजड़नी करनी चाहिए कि हम लोग कितने भाग्यवान हैं। जितना अधिक हम आगे बढ़ेंगे उतना हमको ये अनुभूति होनी चाहिए कि हम लोग कितने भाग्यवान हैं, बिना योग्यता के हमको ये सब कुछ दिया है। किसी भी योग्यता का विचार न करते हुए इस कृपा का वर्षा हम पर हुआ है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो गौलोक का प्रेम धन है। साक्षात गौलोक अगर आप उसका सार ढूंढेंगे तो वो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में बाहर आएगा, वो भी ध्वनि के रूप में आएगा, सबसे सूक्ष्मतम सर्वोत्तम रूप में बाहर आएगा। और वही उसी सर्वोत्तम धन को स्वयं कृष्ण हैंड डिलीवरी देने के लिए आए हैं, खुद किसी के द्वारा भेजा नहीं है, स्वयं आए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण भेंट होती है, जो सबसे मूल्यवान भेंट होती है, जो सबसे अमूल्य भेंट होती है, वो हम खुद जाकर देते हैं, कोई कोरियर से भेजते नहीं उसको, या किसी के हाथों में देते नहीं। कभी कभी ऐसी चीज़ें हम लोग हॉस्पिटल में करते हैं कि किसी को, अटेंडेंट को, वार्ड बॉय को, नर्स को, किसी को देते नहीं, उसको खुद जाकर डिलीवर करके आते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, रहस्यमय चीज़ होती है, गुप्त चीज़ होती है, गोपनीय वस्तु होती है। तो उस समय क्या करते हैं, खुद जाते हैं और दे के आते हैं। कभी डायरेक्टर खुद आते हैं और खुद उसको डिलीवर करते हैं हमारे पास। तो वैसे ये सबसे गोपनीय, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अमूल्य, सबसे शक्तिमान, सबसे कल्याणकारी, सबसे करुणामय, मैग्निफिसेंट ये वस्तु जो गौलोक का सार है, वो कृष्ण स्वयं एक अद्भुत रूप धारण करके लेकर आते हैं। बाकी जब अलग अलग रूप में आते हैं तो किसी का वध कर देते हैं, किसी का चरित छेद कर देते हैं, अवकाश में युद्ध करते हैं, भयंकर ब्रह्मांड को पूरा हिला देते हैं, हाहाकार मच जाता है, ऐसा भयंकर कार्य करते हैं कभी कभी। लेकिन कोई शस्त्र अस्त्र ना लेकर ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जो केवल करुणा की मूर्ति है, केवल करुणा से ही बनाए, मूर्तिमान करुणा, इस भाव से वो आते हैं। जब ऐश्वर्य में आते हैं तो वध कर देते हैं, है ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृतम। लेकिन इस रूप में जब आते हैं तो वह ऐश्वर्य छोड़कर आते हैं और औदार्य प्रधान रूप धारण करके आते हैं। गौलोक धाम के दो प्रमुख भावना धारा है, हाँ, गौलोक धाम में दो प्रमुख भावनाओं का धारा है, एक है माधुर्य धारा और एक है औदार्य धारा। माधुर्य में अलग अलग प्रकार के रसों में भगवान का प्रेम का प्राकट्य होता है, लेकिन औदार्य में केवल भगवान देते हैं और देते हैं और देते हैं, बिना योग्यता के देते हैं और देते हैं। जब औदार्य प्रधान होता है तो उस धाम को नवद्वीप कहते हैं और उस रूप को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और जब माधुर्य प्रधान होता है तो उस धाम को गोलोक वृंदावन कहते हैं और उस रूप को श्री कृष्ण कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं। तो ये जो माधुर्य है उससे भी औदार्य अधिक शक्तिशाली है, और माधुर्य में भी औदार्य है, औदार्य में भी माधुर्य है, दोनों एक दूसरे में पूरे पूरा परस्पर पूरक है ये दोनों के लिए। लेकिन जब एक प्रधान होता है तो नवद्वीप और गौरांग महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं, और माधुर्य प्रकट होता है तो वृंदावन धाम और कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे हमारा विचार किया जाए, हम जैसे लोगों का, तो हमारे लिए औदार्य स्वरूप गौरांग महाप्रभु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महादेव हमको समझ में आएगा नहीं आएगा बहुत दूर की बात है, लेकिन औदार्य का लाभ जरूर तुरंत मिल सकता है, जो भी मिल रहा है ना। सौदार्य जो है वो जल्दी समझने लायक वस्तु है, इसका लाभ लेने पर हम समझ सकते हैं। हम गरीब है बहुत, तो किसी आके 2-4-5 हज़ार दे दिए तो हमको समझ सकता है कि इसका कितना महत्व है। तो उस प्रकार से जब हम पतित हैं, कलयुग के जीव हैं, बहुत भटक रहे हैं यहाँ पर, कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, ज़्यादा चमत्कार तो नहीं हो रहा है कुछ, ऐसे अवस्था में ये एक औदार्य के साथ हम रिश्ता बहुत जल्दी बना सकते हैं। वी कैन रिलेट टू दी औदार्य वेरी इजीली। और हमारे परम पूज्य जयप्रताप महाराज भी बताते हैं हमेशा कि श्री वृंदावन धाम और श्री मायापुर धाम दोनों बहुत प्रभावशाली धाम है, यहाँ तक कि श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु बनकर आए और उन्होंने श्री वृंदावन धाम का ही प्रचार किया, श्री वृंदावन धाम को लोगों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। श्री वृंदावन धाम में जो लीला भागवत में वर्णन की गई है उनका ही प्रचार करने का उन्होंने प्रयास किया। तो मूलभूत आधार श्री वृंदावन धाम ही है, लेकिन फिर भी कलयुग में श्री वृंदावन धाम जो माधुर्य धाम है वो धीरे धीरे अप्रकट होते जाएगा, धीरे धीरे उनका गौरव जो है वो कंसील यानी कवर किया जाएगा और श्री गौरांग महाप्रभु का जो नवद्वीप धाम है वो अधिक अधिक प्रकट हो जाए होते जाएगा। जैसे एक कमल बंद हो रहा है और दूसरा कमल खुल रहा है, अधिक 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 खुलते जाएगा। इसमें गौरव किसी का कम नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि से हमारी अनुभूति के लिए एक कमल बंद हो रहा है दूसरा कमल खिल रहा है। तो अगर हमारे मन में ब्रज के प्रति प्रेम है, वृंदावन के प्रति प्रेम है तो वो रखना चाहिए, लेकिन उस प्रेम को अगर हमको रियलाइज करना है, साक्षात्कार करना है, तो नवद्वीप धाम उसको मदद करेगा। यही गौरांग महाप्रभु की कृपा है। जानना आपको वही है, जानना हमको समझना वही है, लेकिन उसकी अनुभूति औदार्य के माध्यम से होगी। ये चैतन्य महाप्रभु का हमारे लिए विशेष भेंट है। तो श्री कृष्ण जब श्री कृष्ण बनकर वृंदावन में आए तो उन्होंने कई जगह पर ये क्या कहते हैं निर्देश किया है कि मैं अगले बार इस रूप में आने वाला हूँ। फिर जब हम श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा दिए गए नवद्वीप की परिक्रमा का वर्णन सुनते हैं, जिन्होंने जीव गोस्वामी को उसका परिक्रमा दिया नवद्वीप धाम का, ठाकुर भक्ति विनोद उसको लिखते हैं, तो हम समझेंगे कि सत्ययुग की शुरुआत से महाप्रभु चैतन्य दर्शन दे रहे लोगों को, सत्ययुग की शुरुआत से। हाँ, तो धीरे धीरे हम आज अभी प्रयास करेंगे समझना कि कैसे कैसे चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग जगह पर निर्देश दिया है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण या नरसिंह भगवान या वराह भगवान या मत्स्य अवतार वगैरह सभी इटर्नल हैं, सभी शाश्वत हैं, हर समय अपने अपने स्थानों पर दिव्य लीलाएँ करते रहते हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने अपना निर्देश किया है वो बरसाना में किया है। बहुत सुंदर सुंदर लंबी लंबी लीलाएँ हैं। आज बहुत पवित्र दिन है, आज होली का दहन भी है, आज होली का भी दिन है। हाँ, आज और कल तो पीली पोखर ये वो स्थान है। वो पीली पोखर बना क्यों? क्योंकि उसका नाम प्रिया कुंड था, पहले वृषभानु महाराज का कुंड था वो। तो यशोदा देवी ने एक सुंदर लीला में भाव विभोर होकर राधा रानी को गले लगाया, आलिंगन दिया और भाव में मग्न होकर उन्होंने हल्दी का हाथ में लेप लगाया, राधा रानी के हाथ में हल्दी का लेप लगाया, जिसका अर्थ होता है वाग निश्चय, अपने पुत्र के साथ में सगाई का निर्देश किया उन्होंने। और भाग भाग के आई, जब ही आनंद में ऐसे के हवा में उड़ते ही आ गई, लेकिन जब वृंदावन सॉरी बरसाना में प्रवेश होने लगा, सीमा तक पहुँच गए, जो सीमा शुरू होती है पीली पोखर से प्रिया कुंड से, तब उनको होश आया कि अरे भाई घर में क्या कहेंगे। तो ललिता जी के और विशाखा जी के निर्देश से चर्चा करने के बाद निर्णय हुआ कि हम अभी आपके हाथ धुलवा देंगे, इसके अंदर ऐसे स्वच्छ धुलवा देंगे कि किसी को पता भी चलेगा नहीं क्या लगाया था इसको। तो राधा रानी फिर किनारे में बैठी और सखियों के निर्देश के अनुसार उन्होंने हाथ धोए अपने, बहुत गहरे विचार में हाथ धोए। बहुत सुंदर बात है ये। कौन सा विचार था कि विवाह करूं कि नहीं करूं? विवाह करूं तो ये रोज से छुप छुप के मिलना और ये जो चटपटी लीलाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी, और विवाह करूंगी तो रोज का जो छुप छुप के मिलना और जो विरह की अनुभूति होती है वो समाप्त होकर उनके साथ ही चिरंतन संग होगा, तो इसमें से क्या चुनूं? निरंतर संग सुनो चुनो कि चटपटी लीलाओं का अनुभव जो है वो भी बहुत अच्छा लगता है, वो चुनो। ऐसा विचार करके वो हाथ मल रही है और सोच रही है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, बहुत देर तक मलती रहती है। फिर सखियाँ आकर उनको उनके जो है ना भाव विभोर था तुम जगाती उनको, अरे हो गया हाथ धो के, अभी कितनी देर हाथ धो, चले जाओ अभी घर। तो वो हाथ धोने की वजह से पूरा कुंड पीला हो गया और किसी को पता नहीं चला, सब लोग अचंभित होते रहे कि पीला कैसे हुआ, क्या ये पीली वस्तु क्या है, हाँ ये पीली वस्तु क्या है। ये भी बरसाने के ही बाबा जी का उपहार है हमारे लिए। तो कृष्ण को बहुत देर तक रहा नहीं जाता है, बहुत कम देर नंदगांव में रह पाते हैं, उनका सारा ध्यान सारा आकर्षण बरसाने के हो रहे, तुरंत चले आते हैं। बाल्यावस्था ज्यादा बड़ी अवस्था नहीं है, वो भी जब आते हैं प्रिया कुंड में देखते हैं, अरे ये तो पीला कैसे हो गया, कल तक तो स्वच्छ था, स्फटिकमय स्वच्छ था, पारदर्शी, आज भी पारदर्शी लेकिन पीला पारदर्शी हो गया। तो वो ऐसे मन ही मन पूछ रहे हैं कि ये पीली वस्तु क्या है, ये पीला रहस्य क्या है। वैसे करते करते जल में उतरते हैं, तो जल में उतरते हैं तो उनको वो पीला रंग लगता है और भाव विभोर हो जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जल में डूबते हैं, वो उनका दो हाथ जो है वो जल के पृष्ठभाग के ऊपर है और उनका मोर पंख जो है वो पृष्ठभाग के ऊपर है, उनका सर भी झुका हुआ है पूरा, और ये तीन चीजें जो है वो पृष्ठभाग पर घूम रही है और आसमंत में सब जगह पर एक ही आवाज गूंज रही है कि ये पीला रहस्य क्या है, से गूंज रही है आवाज पूरी वातावरण में। सब ब्रजवासी आते देखते हैं आवाज कहाँ से गूंज रही है, और देखते हैं कि प्रिया कुंड के पृष्ठभाग के ऊपर तीन वस्तुएं एक साथ डोल रही हैं। वो धीरे धीरे वो व्यक्ति बाहर आती है, और जब बाहर आती है व्यक्ति तो पूरा पीला रंग छा गया है उसके ऊपर, पूरा स्वर्णमय रंग छा गया है, और फिर भी वो प्रश्न गूंज रहा है कि ये पीला रहस्य क्या है। और कृष्ण बाहर आते हैं पूर्णतः गौरव वर्ण स्वर्ण वर्ण प्राप्त करके, और लेकिन जब जैसे अंदर गए थे वो भाव उनका अलग था, जब बाहर आए तो केवल यही पूछ रहे हैं कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ है। तो ग्वाल बाल कह रहे हैं अरे तुम ही कृष्ण हो, नहीं श्याम सुंदर कहाँ है, मुझे श्याम सुंदर से मिलना है। तो ग्वाल बाल बड़े विचित्र अवस्था में आ गए कि अभी क्या बताएं इनको, कृष्ण को क्या हो गया हमारे, वो स्वयं कृष्ण है और पूछ रहे हैं कृष्ण कहाँ है, तो बार बार कह रहे तुम ही कृष्ण हो, लेकिन फिर वो ग्वाल बाल नहीं बता रहे कृष्ण कहाँ है, वो छाती पीट रहे हैं तो कृष्ण नहीं बता रहे हैं। तो फिर वो जाकर पेड़ों को पूछने लगे, वृक्ष वेलियों को पूछने लगे, ग्राम में देवता वन्य देवताओं को पंछियों को पुकारने लगे, क्या कहीं तुमने श्याम सुंदर को देखा है, मुझे दर्शन कराओ उनके। तो ये उनकी अवस्था देखकर और ग्वाल बाल परेशान हो जाते हैं, कहते हैं उस दिन श्री कृष्ण शाम तक उस अवस्था में रहे। अभी ग्वाल बाल इतने परेशान थे कि ऐसी विचित्र अवस्था में उनको घर कैसे ले जाए और क्या बताएं मैया को, क्या हुआ आज, ऐसे कैसी अवस्था हो गई। जैसे अगर मैं अगर आपको मिला और पूछने लगा कि विश्वरूप कहाँ है विश्वरूप कहाँ है, तो आप बोलेंगे प्रभु जी क्या हो गया आपको, इट्स अ बिग साइकेट्रिक प्रॉब्लम, हाँ मनोवैज्ञानिक समस्या है बड़ी है कि मैं खुद की पहचान ही भूल गया और मैं खुद को ही पूछ रहा हूँ कहाँ है, तो बड़ी विचित्र अवस्था है ये। और ग्वाल बालों के साथ चले गए ना वो घूमने के लिए, तो ग्वाल बालों की जिम्मेदारी बनती है कि मैं ठीक से लौट के लेके आए उनको। तो दिन भर वो ऐसे विचित्र अवस्था में रहे, रोते रहे रोते रहे, पुकारते रहे पुकारते रहे। तो रहस्य की बात ये थी कि राधा रानी का जो भाव था वो उनके अंदर प्रवेश कर गया, और राधा रानी के भाव में वो भूल गए कि मैं कृष्ण हूं, और राधा ही बनकर कृष्ण को ढूंढ रही हैं। तो हमारे प्रिय परम पूज्य बरसाना महाराज जो न्यू वृंदावन में रहते हैं, उन्होंने कहा था कि सबसे पहली बार श्री कृष्ण ने निर्देश किया कि इस भाव में मैं आने वाला हूं अगले अवतार में। तो ये उनकी पहली अनुभूति है। कहते हैं कि जब वो फाइनली शाम को होश में आए, पुनः अपनी चेतना में आए, तो कहते बहुत थक गए थे वो, टोटली एग्जॉस्टेड। जैसे हम लोगों को कोई तो देखते ना, हम लोग कभी कभी किसी की साइकेट्री के अंदर कोई हॉन्ट हो जाता है, हाँ कोई प्रवेश कर जाता है उनके अंदर, और जब वो निकल जाता है ना बाहर, तो फिर वो व्यक्ति बहुत ही एग्जॉस्टेड थका हुआ अनुभव करता है। तब ये जब भाव उतर गए तो कृष्ण बहुत थके हुए कैसे भी करके नंद भवन पहुंचा दिया उनको, सो गए फिर वो। उसके पश्चात जब रासलीला का, ये तो छोटी अवस्था में हुआ, ये तो बरसाना में रह रहे, अभी तक वृंदावन में पहुंचे नहीं। जब वृंदावन में पहुंचे 7 साल की, और रात को बंसुरी बजाई, शरद पूर्णिमा के दिन रास रचाया, एक एक रूप में एक एक गोपी के साथ में रहे, और गोपियों को अहंकार हो गया तो कृष्ण अंतर्धान हो गए। पहले राधा रानी को लेकर अंतर्धान हो गए, फिर राधा रानी को भी, राधा रानी से भी अंतर्धान हो गए, और अकेले वन में घूमने लगे। उनको भी उनके विरह का अनुभव हुआ, लेकिन वो क्योंकि सब लोगों को गर्व हुआ कि हम बड़े स्पेशल हैं, तो कृष्ण छोड़ दिया उनको। आचार्य बता दें कि हम कितना भी कृष्ण पर प्रेम करेंगे, लेकिन अहंकार अगर होगा तो कृष्ण दूर चले जाते हैं। कितनी भी साधना करेंगे, कितनी भी ज्ञान अर्जन करेंगे, कितनी भी तपस्या करेंगे, दान पुण्य करेंगे, कितनी भी सेवा करेंगे, लेकिन अगर अहम उत्तम उत्पन्न होता है तो कृष्ण का नाम लेते हुए भी कृष्ण बड़े दूर चले जाते हैं। और एक तरह से अहम का न होना ही भक्ति है, अहम का न होना ही कृष्ण से मिलन है। और सब कुछ साधना होने पर भी अहम है तो कृष्ण से बहुत दूर है हम लोग। तो अपने सबसे प्रियतम भक्तों के अंदर भी आध्यात्मिक जीवन से संबंधित भी अहंकार कृष्ण को सहन नहीं होता है, वो तो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उनको भी उनका विरह होता है, तो फिर वो इमली तला में जाकर बैठते हैं, और इमली तला में जाकर बैठते हैं उनको रहा नहीं जाता है। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जो है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है राधा सुधा निधि, उसमें वो लिखते हैं कि ये कालिंदी के तट पर कुंज मंदिर में बैठे हुए हैं, मुख में राधा का नाम है और हृदय के प्रांगण में राधा के दो चरणों पर ध्यान कर रहे हैं, और राधे राधे पुकार रहे हैं, द्वैक्षरी मंत्र पुकार रहे हैं, और इतने भाव में मग्न हो जाते हैं कि वो मुख में राधा का नाम और हृदय में राधा के चरणों पर ध्यान, इससे उनकी कांति जो है गौरवर्ण हो जाती है, स्वर्ण गौरवर्ण प्राप्त होता है उनको। उनको पता नहीं चल रहा है, उनको कुछ मालूम नहीं है, ये पूरा उनका जो रूप है वो गौरवर्ण हो रहा है। उतने में वन्य देवताओं को, ग्राम्य देवताओं को पूछते पूछते गोपियाँ आती हैं वहाँ पर, अचानक देखते हैं कि अरे ये तो ये अद्भुत जो तेजस्वी दृश्य है वो क्या है। बहुत चर्चा करती है, पता नहीं सब कुछ कृष्ण जैसा है, लेकिन वर्ण तो गौरवर्ण है, तुम्हारे जैसा वर्ण है, श्याम सुंदर वर्ण नहीं है उसके अंदर। तो फिर राधा रानी धाड़स करके आगे जाते हैं, उनको स्पर्श करती है। जब स्पर्श करती है तो जो कृष्ण वहाँ बैठे हैं मग्न होकर, वो पूर्ण बाह्य अवस्था में आ जाते हैं, पुनः अपना श्याम वर्ण प्राप्त होता है उनको, और गौड़ वर्ण जो है धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। आंखें खोलते हैं तो राधा रानी पूछती है क्या रहस्य है, तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे ध्यान में मैं तुम ही हो गया था, मैं राधामय हो गया था, और जब मैं राधामय हो गया, तुम्हारा ही रूप भाव मैंने धारण किया, तो मुझे ऐसे दिव्य आनंद की अनुभूति हुई जो मैंने पहले कभी भी नहीं की। लेकिन तुमने स्पर्श करके उस दिव्य समाधि को भंग करके मेरे उस आनंद में आपने एक व्यवधान डाला है, अब मुझे रहा नहीं जा रहा है, अब मैं अभी ऐलान करता हूँ कि अगला अवतार मैं लूँगा इसी भाव में। आप सोच सकते हैं कि राधा रानी का प्रेम कितना अकल्पनीय और अचिंत्य होगा, कृष्ण के लिए भी है वो, जब सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ कृष्ण हैं, लेकिन ये जो थोड़े समय के लिए अनुभव करते हैं उसके लिए इतनी लालायित हो जाते हैं, और अनभिज्ञ भी है वो, यानी उनको पता भी नहीं है कि क्या है ये नया विषय क्या है। तो एक पूरा 48 साल का अवतार खर्च करते हैं, ही स्पेंड्स वन फुल अवतार 48 ईयर्स जस्ट टू नो, केवल समझने के लिए कि क्या रहस्य है। श्री कृष्ण भी सब कुछ जानते हुए कुछ चीज़ नहीं जानते, उसमें से एक वस्तु ये है, और वो जानने के लिए उन्होंने पूरा एक अवतार खर्च किया है। इससे हम राधा रानी का महत्व समझ सकते हैं कि राधा रानी क्या पर्सनालिटी है, क्या व्यक्तित्व है वो, जो कृष्ण भी इतने लालायित रहते हैं उसके लिए। सब विश्व को नियंत्रित करने वाले राधा कृष्ण भगवान, जिनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी, तरण का पत्ता भी नहीं हिल सकता है, कुछ अणु भी नहीं हिल सकता है, वो श्री कृष्ण भगवान ये राधा रानी नाम के व्यक्तित्व के पूर्णता आधीन रहते हैं। राधा रानी उनको नियंत्रित करना नहीं चाहती, लेकिन राधा रानी के द्वारा वो हमेशा नियंत्रित रहते हैं। उनका भाव, उनके विचार, उनकी भगवत्ता वो खो देते हैं, त्याग कर देते हैं उनके लिए, उनके माधुर्य प्रेम के सामने। तो इमली तला में श्री कृष्ण भगवान ने फिर दूसरी बार निर्देश किया, तीसरी बार निर्देश किया, बहुत लंबी कहानी है, प्रभुपाद जी ने सबसे आखिरी कहानी जो अनुवादित की, ब्रह्म विमोहन लीला, बहुत लंबी कहानी, आप सब जानते हैं उसको। लेकिन ब्रह्मा जी को कृष्ण के लिए ये जो उन्होंने किया कार्य, उनके ग्वाल बालों को चुराने का, बछड़ों को चुराने का, उसके बारे में इतना पश्चाताप हुआ कि पहले बार तो कृष्ण ने उनको माफ नहीं किया, तो उन्होंने दंडवती परिक्रमा किया ब्रजभूमि का, ब्रजभूमि के रज का आश्रय लिया, तो उनको एक प्रकार की क्षमा प्राप्त हुई। लेकिन उनके हृदय में वो पश्चाताप जो है वो चलता रहा। वहाँ से भगवान के द्वारा माफ़ी प्राप्त करके रज के माध्यम से फिर भगवान की स्तुति की उन्होंने, उसके बाद निकले वहाँ से वो, लेकिन ज़्यादा देर उड़ नहीं सके, तुरंत ब्रज में ही उतर गए, वहीं के भी उतर गए। आज भी वो स्थान जो है ना कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर होगा जहाँ से उड़े और वहाँ उतरे, और इतना रोए कि पूरा आज के तारीख में अगर समझो 10 मंजिल का कोई बिल्डिंग खड़ा हो गया ना तो वो कितना ऊंचा होगा, उतना जमीन के अंदर एक कुंड तैयार हो गया उनके केवल अश्रुओं से। इतना पश्चाताप किया, 8 अश्रुओं से, 8 आँखों से अश्रु बहाए उन्होंने, उसका नाम है ब्रह्म कुंड। फिर पर्याप्त मात्रा में अश्रु प्रवाह किया, थोड़े से हल्के हो गए और फिर उड़े राजहंस को लेकर और ब्रह्मा लोक की ओर उड़े, लेकिन फिर पृथ्वी पर उतर गए। मतलब नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, जो भी मैंने किया अच्छा नहीं किया, क्योंकि ब्रह्म पद पर था, ब्रह्म के पद का अहंकार था, ब्रह्म के पद का जो नियंत्रक शक्ति है उससे प्रभावित हो गया था, ये सब कुछ ब्रह्म पद की वजह से है, मुझे ब्रह्म पद नहीं चाहिए। अभी पश्चाताप किया, अश्रु बहाए, फिर भी मुझे लगता है कि इसका एक बार मूल से इलाज करना चाहिए, तो तपस्या करने के लिए बैठ गए। बहुत देर तक तपस्या की, ऐसी तपस्या कोई किया नहीं आज तक। सब लोग तपस्या क्यों करते हैं? नीचे के स्थान से ऊपर जाने के लिए, है ना? ये ब्रह्मा के पद पर है, ब्रह्मांड के सर्वोच्च पद पर है वो, अधिकार, क्षमताएं, एम्पावरमेंट, आप जो भी कहो, सब बेस्ट पोजीशन में है, हाईएस्ट पोजीशन है, सबके प्रपिता में है वो। लेकिन चाह रहे हैं कि मुझे ये नहीं बनना है, अगले साल अगली बार नहीं बनना है, और उसमें मुझे स्टैंप चाहिए अभी के अभी, उसमें सैंक्शन चाहिए कि नहीं होगा अगली बार में। तो इस भाव से तपस्या किया, उच्च पद से निम्न पद में आने के लिए, तुच्छ पद पर आने के लिए। ऐसे एक ही और व्यक्ति हैं जो है उद्धव जी, वो भी सबसे उच्च पद में थे, उन्होंने तिरण का पत्ता बनने के लिए तपस्या किया है। दो ही व्यक्ति ने क्या कहते हैं ना, विपरीत तपस्या किया है, उच्च पद से नीचे आने के लिए। तो जिस जगह तपस्या कर रहे थे वो नवद्वीप धाम का अंतरद्वीप था, जिसको मायापुर कहते हैं, और वहाँ पर फिर ब्रह्मा जी के तपस्या के इस दिव्य नम्र भाव से प्रभावित होकर श्री कृष्ण भगवान ने गौरांग महाप्रभु के रूप में उनको दर्शन दिया। और फिर ब्रह्मा जी धन्य हो गए, उन्होंने कहा कि आप भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए कि दोबारा मैं ब्रह्म नहीं बनूँ, मैं ब्रह्म नहीं बनूँ, एक वन लेवल का आशीर्वाद दे दो, लेकिन जो बनूँ उसमें मैं तुच्छ बनूँ, मुझे कोई पद ना हो, कोई जाति ना हो, कोई समाज में आदर ना हो, कोई मेरी स्थिति ना हो, सब तरह से मैं नगण्य तुच्छ बनूं। तो फिर महाप्रभु के रूप में दर्शन उन्होंने दिया नवद्वीप में ब्रह्मा जी, द्वापर युग की बात है। अब ब्रह्मा का लीला समाप्त हो गया है, अभी और आगे प्रगति लीलाएं बाकी हैं। तो भगवान ने वरदान दिया उनको गौरांग महाप्रभु के रूप में कि आप, जब मैं आऊँगा इस रूप में नाम संकीर्तन करूंगा तो आप यवन कुल में जन्म लोगे। ऐसी स्थिति आपकी होगी कि आप यवन कुल में जन्म लेकर नाम आचार्य बनोगे, मेरा नाम लोगे, कृष्ण नाम लोगे, तो हमारे आपके जाति से भी बहिष्कृत होंगे, और यवन होने के नाते हरिनाम का जप कर रहे हैं इसलिए हिंदू धर्म के द्वारा भी बहिष्कृत होंगे, दोनों जगह से आप मार खाएंगे। ऐसा विचित्र स्थिति में उनको डालने का आशीर्वाद दिया, तब जाकर ब्रह्मा फाइनल संतुष्ट हो गए और फिर चले गए, और फिर उन्होंने हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लिया, और आगे की लीला हम जानते हैं। तो ये तीसरा निर्देश हुआ। अभी देखिए चौथा निर्देश, सत्ययुग में वासुदेव ब्राह्मण था, और आज का जो कोलद्वीप है ना, जिसको हम नवद्वीप कहते हैं, टेक्निकली भौगोलिक आज नवद्वीप कहते हैं, लेकिन वो कोलद्वीप है जिसमें कुलिया पहाड़ है जो गोवर्धन से अभिन्न है, वहाँ पर वासुदेव ब्राह्मण था, उसने वरादेव का भक्त था, वो वरादेव का बहुत तपस्या किया उसने, वरादेव ने दर्शन दिया उनको, और वराहदेव ने दर्शन देके कहा कि मैं अभी सत्ययुग है लेकिन मैं कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लूंगा। ऐसे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। फिर अगली बार 8वीं सेंचुरी में जयदेव गोस्वामी प्रकट हुए। आप सब जानते हैं ना गीत गोविंद का लिखन किया उन्होंने। तो जयदेव गोस्वामी चंपाहाटी में रहते थे, अभी नवद्वीप की एरिया है वो चंपक वन, लेकिन अभी तक नवद्वीप की लीला प्रकट नहीं हुई है। अभी तो 8वीं सेंचुरी चल रही ना, उसमें 15वीं सेंचुरी में 1486 में चैतन्य महाप्रभु आए, तो अभी 600 साल बाकी है उसके। तो 8वीं सदी में ये आए, वहाँ पर रहते थे, राधा कृष्ण के विग्रहों की पूजा करते थे, राधा माधव उनका उनका विग्रह की प्रतिकृति वृंदावन में है और मूल राधा माधव कनक वृंदावन जयपुर में है। तो राधा माधव की उन्होंने चंपा के फूलों से सेवा की। तो एक दिन राधा माधव ने उनको दर्शन दिया और राधा माधव के रूप में दर्शन दिया, फिर उनके सामने राधा माधव ज्वाइन हो गए, चैतन्य महाप्रभु बन गए। तो जयदेव गोस्वामी और उनकी पत्नी जो है बेहोश हो गई, भाव विभोर हो गए ये अद्भुत प्रेममय रूप देखकर, जो कॉन्स्टंट हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये देखकर भाव विभोर हो गए और महाप्रभु चैतन्य ने उनको आदेश दिया, तुरंत आप नवद्वीप छोड़कर जगन्नाथपुरी चले जाओ। तो फिर दुखों के सागर में डूब पड़े वो। उन्होंने कहा कि नवद्वीप सा सुंदर धाम छोड़कर हमें क्यों जाने को बोल रहे। तो चैतन्य महाप्रभु जो दर्शन दे रहे हैं वो कहते हैं कि आपको जगन्नाथ जी की सेवा करने के पश्चात दोबारा नवद्वीप धाम अर्थपूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। इस तरह से उन्होंने जगन्नाथपुरी में निवास किया, वहां पर गीत गोविंद का रचना किया, वहां पर गीत गोविंद जगन्नाथ जी को सुनाया। जगन्नाथ जी क्या कहें आपको, भी बहुत लंबी लंबी लीलाएं हैं। जगन्नाथ जी स्वयं एक बार प्रकट हो गए जयदेव बनकर और जगन्नाथ जी ने अपने मुख से गीत गोविंद का उच्चारण किया, क्योंकि कोई व्यक्ति को सुनना था वो। तो ये बीच में भाव विभोर हो गए, बेहोश हो गए, और व्यक्ति आंख बंद करके सुन रहा था वही बेहोश होकर गिर गए। तो तुरंत जगन्नाथ जी जयदेव बनकर खड़े हो गए और पूरा गीत गोविंद पूरा किया। और जब ये बाद में होश में आए तो वो जयदेव जी गायब और इन्होंने भी आंखें खोली, तो किसी को पता नहीं चला कुछ क्या हो गया बीच में। उसके बाद में उनका पद्मावती के साथ विवाह हुआ। तो मैंने गलत बताया आपको कि पहले पद्मावती को दर्शन दिया उन्होंने, पद्मावती का विवाह उनका जगन्नाथपुरी में हुआ और फिर पद्मावती और गौरांग महाप्रभु जयदेव गोस्वामी, फिर जगन्नाथ जी ने उनको आदेश दिया कि अभी आप दोबारा नवद्वीप जाओ। फिर वहां जाकर उन्होंने निवास किया और फिर राधा कृष्ण ने माधव ने उनको दोबारा दर्शन दिया। ऐसे सुंदर लीला है। कहने का तात्पर्य है कि जयदेव गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया चंपाहाटी में। उसके बाद में उधर ही चंपाहाटी में एक भगवान की सखी ने जन्म लिया ब्राह्मण के रूप में, उनका नाम था कमला की सखी। और वो सखी चंपा के फूल बिनकर राधा कृष्ण की सेवा करती थी और चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया, भाव विभोर हो गई ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा कि आप जब मैं आऊँगा इस रूप में चैतन्य महाप्रभु के, तो आप द्विजवाणी नाथ के रूप में प्रकट होंगे, गदाधर पंडित के छोटे भाई के रूप में प्रकट होंगे। तो आज भी जो वहाँ विग्रह हैं चंपाहाटी में वो द्विजवाणी नाथ के द्वारा सेवित हैं, वो गौर गदाधर के विग्रह हैं जो द्विजवाणी नाथ ने कई समय तक वहाँ पर सेवा किया। जब नित्यानंद प्रभु वहाँ पर पहुँच गए थे जीव गोस्वामी के लेकर, तभी द्विजवाणी नाथ वहाँ पर थे। महाप्रभु के अंतर्दान होने के बाद की बात है ये। जब जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने परिक्रमा दिया तभी द्विजवाणीनाथ, ये जो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पहले ही प्राप्त कर चुके थे पिछले जन्म में, वो वहाँ पर उपस्थित थे। उसके पश्चात समुद्रगढ़ नाम का एक सुंदर स्थान है, उसमें समुद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था और भीमसेन युधिष्ठिर महाराज के प्रतिनिधि के रूप में दिग्विजय करने के लिए निकले थे, एक एक दिशा में एक भाई निकले थे। तो भीमसेन ने समुद्रसेन के साथ में युद्ध किया। समुद्रसेन जानते थे कि भीम भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हैं और अगर मैं भीमसेन को युद्ध में अगर बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दूंगा तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण आएंगे उसको बचाने के लिए, इनको विश्वास था। तुमने ऐसा जानबूझ के भी देखो, जब मित्र का दिग्विजय होता है ना, तो मित्र राजा कोई युद्ध नहीं करते हैं, हाथ मिलाते हैं, खाना खाते हैं और तुरंत आगे जाते हैं चले, कोई घोड़ा रोकने का कोई काम नहीं होता है। लेकिन उन्होंने जानबूझकर युद्ध छेड़ा, जानते हुए कि भीमसेन भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा से उन्होंने घनघोर युद्ध किया। इतना घनघोर युद्ध किया कि भीमसेन परास्त होने लगे और भीमसेन को आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे परास्त हो रहा हूँ। तो पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण बचाओ, अभी मेरे भैया की जो इज्जत है वो खतरे में है, बचाओ बचाओ, ऐसे करके पुकारने लगे। तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए, लेकिन भीमसेन को उसका दर्शन नहीं हुआ। केवल विरुद्ध पक्ष में जो युद्ध कर रहे हैं सेनापति के रूप में समुद्र सेन, उनको कृष्ण का दर्शन हुआ। और कृष्ण ने दर्शन देकर बाल रूप में कुमुदवन में जो उन्होंने साक्ष्य लीला की उसका दर्शन दिलाया उसको पूरा। अभी देखो युद्धभूमि है, युद्धभूमि में बाण चल रहे हैं, गदा चल रही है, धनुष तरणकार चल रहा है, गर्जनाएं हो रही है, घोड़े हाथी खिंकार कर रहे हैं, उसमें कुमुदवन की लीला का दर्शन हो रहा है समुद्र सेन को। इतना भाव विभोर हो गया और तुरंत कृष्ण भगवान ने रूप बदली करके गौरांग महाप्रभु का दर्शन किया उसको। और भीमसेन देख रहे हैं, अभी तो घनघोर युद्ध कर रहा था, अभी तो रथ को छोड़कर नीचे उतर गया, जमीन पर बार बार प्रणाम कर रहा है, लग रहा है कि मुझे प्रणाम कर, लेकिन वो पता था कि मुझे प्रणाम क्यों करेगा वो। तो भीमसेन को आखिर तक समझ में नहीं आया कि समुद्रसेन किसको प्रणाम कर रहा है और शरणागति किसको स्वीकार कर रही है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य प्रेम संकीर्तन का दर्शन कराया उसको। द्वापर युग की बात है, कहते ना वो इंटॉक्सिकेटेड लव, ऐसे प्रेम भावना से पूरे तरह से नशे में चूर होकर दर्शन दिया चैतन्य महाप्रभु ने उनको, और युद्ध वहीं समाप्त हो गया। उसके बाद में निम्बार्काचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया श्री वृंदावन धाम में, अभी भी नीमगांव नाम का धाम, गोवर्धन के रास्ते पर बरसाने से नीमगांव आता है, वहां पर निम्बार्काचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया और बताया कि तुम केशव काश्मीरी बनोगे जब मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा और अपने ज्ञान से पूरे अहंकार को प्राप्त करके मत्त होकर सब जगह पर लोगों को चुनौती देते हुए यात्रा करोगे और फिर मैं आकर तुम्हें निमाय पंडित के रूप में परास्त कर दूंगा और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से तुम्हें यह अनुभूति प्राप्त होगी कि मैं कृष्ण हूँ। तो वो एक और निर्देश किया और फिर निम्बार्काचार्य केशव काश्मीरी के रूप में आए और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको परास्त किया। बहुत तिलमिला गए हो, तो रात में सरस्वती देवी आई और उन्होंने बताया कि तुम जिसके साथ वाद विवाद करने का, परास्त करने का प्रयास कर रहे हो, वो मेरे भगवान है, वो मेरे आराध्य भगवान है, जाओ उनको शरण जाओ। फिर वो केशव काश्मीरी उनको शरण गए। उसके बाद में और एक सुंदर स्थान है जहाँ पर कृष्ण ने निर्देश दिया, सत्ययुग की बात है, यह है सुवर्ण विहार। कितने लोग सुवर्ण विहार गए, वो गुरुद्रुम के आगे, वो है ना हरिहर क्षेत्र, उसके आगे जाएंगे तो सुवर्ण विहार आता है, उसके आगे जाएंगे तो नरसिम्हपल्ली आता है। तो सुवर्ण विहार में सुवर्णसेन राजा राज्य कर रहे थे और बहुत ज़्यादा भौतिक वस्तुओं में आसक्त थे। तो फिर नारद मुनि आए, सबका कल्याण करते हुए, और आकर राजा को बहुत उन्होंने कठोरता से प्रचार किया कि कैसे तुम माया में फंसे हो, कैसे तुम सब कुछ करते हुए भी इतने माया से आसक्त हो और नरक में जाओगे। उनको बहुत दिव्य बोध दिया तो राजा का हृदय परिवर्तन हुआ और सुवर्णसेन राजा एकदम भक्त बन गया। और वहीं रहकर, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का चिरंतन स्थान है नवद्वीप, जिसका अंग है गोद्रूम और गोद्रूम में उसका राज्य था, वहां बैठकर जो भगवान के नाम का उन्होंने भजन किया उसके प्रभाव से श्री गौरांग महाप्रभु और गदाधर पंडित का दर्शन प्राप्त हुआ उनको, सुवर्णसेन को, और उस सुंदर स्वरूप में स्वप्न में दर्शन दिया उनको। स्वप्न में गौरांग महाप्रभु का इतना सुंदर दर्शन, कमल जैसी आंखें, हाँ मदन मत्त होकर कृष्ण प्रेम में गूंजते हुए चैतन्य महाप्रभु साथ में गदाधर नृत्य कर रहे हैं जो राधा रानी का स्वरूप है, वो देखकर बहुत भाव विभोर हो गए। वो स्वप्न में भी बेहोश हो गए और वास्तव में भी बेहोश हो गए। जब होश में आया तो उनको रहा नहीं गया उनके विरह से, तो वो जो स्वप्न में दर्शन दिया था उनकी ध्वनि उनको सुनाई पड़ी आकाशवाणी के रूप में। उन्होंने कहा कि जब मैं इस रूप में कलयुग में आऊँगा तो तुम बुद्धिमंत खान के रूप में जन्म लोगे। और ये बुद्धिमंत खान कौन है, बहुत सुंदर कहानी उनकी। ये बुद्धिमंत खान ने श्री चैतन्य महाप्रभु का जब विष्णु प्रिया के साथ विवाह हुआ था तो सारा धन खर्च किया था, पूरा मैरिज सेरेमनी चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने स्पॉन्सर किया था। चंद्रशेखर भवन में जब भी ड्रामा फेस्टिवल होता था ना चैतन्य महाप्रभु का, किसको याद है महाप्रभु क्या बने थे वहां पर? रुक्मिणी बने थे। सच्ची माता को भी ध्यान में नहीं आया कि कौन है, सच्ची माता भी रुक्मिणी का रोल देखकर इतना रोई। और ड्रामा समाप्त होने के बाद में उनको बताया गया कि रुक्मिणी तो तुम्हारा गौरांग ही था। उनको विश्वास नहीं हुआ, इतना सुंदर अदाकारी महाप्रभु ने की। तो चंद्रशेखर भवन में जो नाटिका उत्सव होता था उसका पूरा खर्च बुद्धिमंत खान करते थे। और जब बंगाल से चैतन्य महाप्रभु अपने गौड़ीय वैष्णवों को, बंगाली वैष्णवों को लेकर जब जगन्नाथपुरी गए तो उनका जो जाने का खर्च था, यात्रा एक्सपेंस, वो पूरा बुद्धिमंत खान ने किया। हर समय जब भी बंगाली वैष्णव आते थे नवद्वीप धाम से पुरी के लिए तो सारा उनका खर्च जो था, जाने का आने का, जो रोड में टैक्स पे करते थे, वो सब कुछ बुद्धिमंत खान करते थे। उसके बाद में सीमांत द्वीप में क्या हुआ वो भी एक लंबी कहानी है। नारद मुनि को एक बार बैकुंठ में विष्णु का महाप्रसाद प्राप्त हो गया और वो खाकर वो भाव विभोर हो गए और ऐसे लोटपोट गोल गोल घूमते घूमते आते आते कैलाश पहुंच गए। कैलाश में शिव जी ने कहा, नारद मुनि जी क्या हो गया, आप तो मेरे भाई हो। तो नारद मुनि होश में आए, बोले कि मुझे देखो विष्णु का प्रसाद प्राप्त हुआ। तो शिव जी कहते हैं कि आपको याद नहीं आया कि आपका भी एक भाई है शिव जी नाम का, उसे कैसे भूल गए आप? बोले वो चीज़ ही ऐसी थी, मैंने 11 साल तक इंतज़ार किया था, फिर लक्ष्मी देवी ने मुझे कृपा करके, विष्णु ने कृपा किया, फिर प्राप्त हुआ, तो मैं खा गया उसको, भूल गया सब दुनिया को। हो सकता है मेरे हाथ में कुछ लगा हो। तो हाथ खोल कर देखा तो कुछ महाप्रसाद चिपका हुआ था, तो उन तुरंत शिव जी को दे दिया। शिव ने तुरंत उसको ग्रहण किया, शिव जी तांडव करने लगे, पूरा विश्व हिलने लगा। तो पार्वती भाग भाग के आई, बोले क्या हुआ महाराज, अभी तो प्रलय का समय नहीं, आप तांडव क्यों कर रहे हैं? बोले तांडव नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेम तांडव नृत्य कर रहा हूँ। क्यों ऐसी अवस्था हुई आपकी? बोले नारद मुनि ने मुझे महाप्रसाद दिया विष्णु का, इसलिए मेरी अवस्था ऐसी हुई। तो पार्वती कहती है, आपको पत्नी की याद नहीं आई जब महाप्रसाद मिला, ऐसे कैसे अकेले खा सकते हो आप? तो क्या करें, अभी थोड़ा सा मिला तो खा गया मैं, अभी मेरे पास है ही नहीं। बोले तुम पुरुष लोग ऐसे होते हो, हम स्त्री ऐसे नहीं होती है, हम जब कुछ पाते हैं तो पहले सोचते हैं मेरे बेटे को दूं, मेरे पति को दूं, मेरे मैत्रिन को दूं, इसको दूं, उसको दूं, सबको दूं, ये परोपकार का विचार हम सोचते हैं। अब मैं जाकर तपस्या करूंगी और विष्णु से ऐसा प्रसाद प्राप्त करूंगी कि पूरे विश्व के मेरे जितने जीव यहाँ बद्ध रूप में पड़े हुए हैं वो सब लोगों को उसका लाभ होगा। तो पार्वती देवी वो उस द्वीप पर आई जो अंतरद्वीप के बाजू वाला द्वीप है, नवद्वीप में, और वहाँ पर तपस्या की उन्होंने विष्णु की। वहाँ पर उन्होंने, श्री कृष्ण भगवान विष्णु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पार्वती देवी को दर्शन दिया है और पार्वती देवी ने उनके चरणों की रज जो है अपने मांग में भरी है वहाँ पर, इसलिए उसका नाम पड़ा सीमांत द्वीप। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने सुंदर दिव्य रूप में पीतांबर धारण करते हुए हरिनाम का गुंजन करते हुए हरिनाम ही दान दिया पार्वती को प्रसाद के रूप में, और पार्वती को कहा पूरे विश्व को ये प्रसाद बांट दो। तो पार्वती जी वहीं बस गई सीमांत द्वीप में, और वो भी बहुत पहले किसी युग में उनको दर्शन दिया था। उसके बाद में त्रेता युग की कथा है, प्रभु रामचंद्र और सीता देवी, हाँ, मामगाछी यानी मोददरुम द्वीप, उस स्थान पर, अभी त्रेता युग में वो तो प्रकट नहीं हुआ है लेकिन वही चिरंतन स्थान है, वहां पर वनवास कर रहे हैं। और एक दिन प्रभु ऐसे ही स्मित हास्य कर रहे हैं और माँ सीता पूछ रही है, स्वामी क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे, मैं देख रहा हूँ कि मैं द्वापर के बाद में जो आगे युग आएगा उसमें मैं यहाँ पर आऊँगा, गौर वर्ण में आऊँगा और मदन मत्त होकर मैं भरी मेरे नामों का उच्चारण करूँगा, संकीर्तन करूँगा। लेकिन स्वामी लेकिन क्या हुआ? लेकिन मैं उस अवतार में बीच जवानी में मेरी पत्नी के साथ, जो तो आप मेरी पत्नी बनोगी, आपको छोड़कर चला जाऊँगा संन्यास लेकर। तो सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले क्यों ऐसा करेंगे आप? विश्व को प्रेम और आनंद बांटने के लिए आप हरिनाम के माध्यम से आओगे और मुझे छोड़ के जाओगे, ये तो ठीक नहीं करोगे आप, इसका कारण क्या है? तो फिर विशेष बात समझने की यह है कि मोदद्रुम द्वीप में प्रभु रामचंद्र ने सीता देवी को संयोग और वियोग का रहस्य समझाया है। वो कहते हैं मेरे भक्त मुझे मिलते हैं और मुझे मिलकर एक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे करोड़ों गुना अधिक आनंद की प्राप्ति मुझसे वियोग में प्राप्त करते हैं। और वो वियोग का आनंद जो है वो पहली बार दिव्य रूप से प्रकट मात्रा में सब लोगों के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसलिए मैं क्रूरता के आधार पर नहीं, मेरे भक्तों को यानी तुम्हें भी इस वियोग विपरलम्ब आनंद को अनुभव कराना चाहता हूँ। तो सीता देवी शांत हो गई है। तो ये ऐलान भी उन्होंने त्रेतायुग में किया था वनवास में। उसके बाद में राजा गुहा जो है वो सदानंद विप्र बने। राजा गुहा जो है ना, गुहक जो जाके प्रभु मिले ना, उनको गले लगाया, उनको शूद्र होते हुए भी उनको गले लगाया, तो वशिष्ठ मुनि प्रभावित हो गए देखकर कि देखो प्रभु कैसे जाति पाति का भेद नहीं करते, हृदय के भाव को देखते हैं। इसलिए वशिष्ठ मुनि ब्रह्म ऋषि सर्वोत्तम ब्राह्मण होने के बावजूद भी जब उन्होंने प्रभु को गुहक राजा को आलिंगन देते हुए देखा तो वशिष्ठ मुनि जाके उसको भी आलिंगन दिया। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है तौर तरीके के अनुसार, शिष्टाचार के अनुसार, लेकिन फिर भी उन्होंने आलिंगन दिया। तो वो राजा गुहा जो है वो सदानंद विप्र के रूप में उनका जन्म हुआ। और प्रभु रामचंद्र ने उनको आशीर्वाद दिया कि जब मैं चैतन्य महाप्रभु रूप में आऊँगा तब तुम सदानंद विप्र के रूप में जन्म लोगे। तो ये सदानंद विप्र जो है, ये कई और थे, उनको पता चला कि जगन्नाथ मिश्रा के यहाँ पर पुत्र प्राप्ति हुई तो भाग भाग के देखने को आया, तो जन्मोत्सव में था वो वहाँ पर। और वो जन्मोत्सव का अलौकिक आनंद का अनुभव करके वो इतने भाव विभोर हो गए कि जब लौट के अपने घर पे गए तो उनको स्वप्न, वो एकदम ऐसे कहते ना भाव विभोर अवस्था में, बेहोश ऐसे अवस्था में हो गए, उसको तुरिया अवस्था कहते हैं, इवेंट इन ट्रांस। और उस ट्रांस में जो बालक का दर्शन उन्होंने किया था निमाई का, गौरांग का, वही उनकी आंखों के सामने राम के रूप में रूपांतरित हो गए। तब उनको समझ में आया कि अरे मुझे कहा गया था पिछले जन्म में वो यही भगवान है। तो भाग के वापस गए वो। और आप सोच सकते हैं ना, पहले तो जगन्नाथ मिश्रा के बालक का रूप में दर्शन करने गए थे, अब क्या देख रहे हैं वो कि ये मेरे प्रभु हैं, प्रभु रामचंद्र हैं, मेरे आराध्य दैवत हैं। लेकिन उनको बताया गया था, किसी को पता ना नहीं है। तो सदानंद विपरीत कई कई बार आए जगन्नाथ मिश्रा के घर पे, बार बार इस बालक की सुंदर लीलाओं को देखकर प्रभु रामचंद्र को याद करते थे कि मेरे प्रभु अद्भुत रूप में यहाँ पर लीला कर रहे हैं। और उसके बाद में हंस वाहन नाम का एक स्थान है, सूत गोस्वामी ने नहीं, शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी के मुख से गौरांग महाप्रभु की लीला सुनी थी। ये द्वापर की बात है, ये कलयुग की बात नहीं है। तो फिर वो शौनक मुनि सूत गोस्वामी के मुख से जो गौरांग महाप्रभु के विषय में महात्म्य सुना था, तो सब लोगों ने उनको आग्रह किया कि हमें गौरांग महाप्रभु के बारे में बताओ। तो शौनक मुनि कहाँ गए, नवद्वीप में गए और वहाँ पर वो बैठ गए। तो वो उनका जो गौर महात्म्य वर्णन का जो घटना है वो इतनी फैल गई कि देवता लोग भी आने लगे, उसमें ब्रह्मा जी भी आ रहे हैं, तो शिव जी भी आ रहे हैं। तो शिव जी जब आ रहे नीचे तो गधे को इतने सॉरी अपने नंदी बैल को इतना जोर से दौड़ाया कि नंदी बैल जो है वो बेहोश हो गया, इतनी स्पीड में झाग आ गया मुँह से। तो उसको त्याग करके उन्होंने ब्रह्मा जी के राजहंस पर लिफ्ट लिया और ब्रह्मा जी के राजहंस पर बैठ गए वो। और फिर ब्रह्मा जी, दोनों ब्रह्मा जी और शिव जी आ गए और वहाँ पर उन्होंने शौनक जी से गौरांग महाप्रभु का महात्म्य सुना। वो कहते हैं ब्रह्मा और शिव जी दोनों बेहोश हो गए। उस जगह का नाम है हंस वाहन, क्योंकि हंस के वाहन पर बैठकर शिव जी आए थे वहाँ पर। वहाँ पर शिव जी की मूर्ति भी है, बहुत सुंदर स्थान है, अभी कोई ज़्यादा जानता नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन महाराज जी उस पर यात्रा ले गए थे हमारी एक बार, और हम भी हमारे हॉस्पिटल से यात्रा ले गए थे हंस वाहन। तो ये सारे स्थान जो है ये चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले ही ये लीलाएं प्रकट हुई। और आखिरी जो है वो है हरिहर क्षेत्र, यहाँ पर स्वयं कृष्ण जो है वो आदेश विष्णु और आदेश शंकर के रूप में प्रकट हुए हैं गोद्रुम द्वीप में। और वहाँ पर जब भगवान ने, शिव जी ने जब उनसे युद्ध किया था, मेरे ख्याल से बाणासुर के सपोर्ट में युद्ध किया था, नहीं काशी राजा के सपोर्ट में युद्ध किया था। काशी राजा के राजा ने ऐसा वरदान मांगा था कि जब भी मैं संकट में आऊँगा, मेरे जीवन का निर्णायक युद्ध करूँगा, यानी कृष्ण के साथ युद्ध करूंगा। कृष्ण का कट्टर शत्रु था वो काशीराज। तो युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने याद किया, शिव जी ने कहा था कि मैं आऊंगा आपको मदद करने के लिए, ऐसा नहीं कहा था। तथास्तु, आप अपने शत्रु का वध करने में समर्थ होंगे, ऐसा वध नहीं दिया। वो जानते थे इसके मन में वर वैर किससे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तुम निर्णायक युद्ध करोगे अपने जीवन का शत्रु के साथ, तब मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा। तो इसलिए उसके पक्ष में भगवान के साथ उन्होंने युद्ध किया। और जब घनघोर युद्ध हुआ तो भगवान ने चक्रों को भेजा और वाराणसी काशी को पूरा जलाकर भस्म कर दिया। शिव जी का स्थान पूरा उच्चाटन कर दिया उन्होंने, शिव जी का स्थान बचा ही नहीं। तो शिव जी गुद्रुम द्वीप में आए और वहाँ पर पूरे कहते ना इंटॉक्सिकेटेड, पूरे मदन मत्त होकर उन्होंने गौरांग महाप्रभु का नाम मुख में लेकर कीर्तन करने लगे, गौरांगा। तो कहते शिव जी वहाँ पर शिव जी के रूप में रहते ही नहीं है, मतलब शिव जी रूप शिव जी का है लेकिन भाव पूरा गौरांग महाप्रभु का। और उस हरिहर क्षेत्र में आज भी वो शिव जी रहते हैं, और हरिहर क्षेत्र में जो भी मरता है उसके कान में शिव जी जाकर गौरांगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौरांगा। और तुरंत वो व्यक्ति गौरांग महाप्रभु के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो ये सब वर्णन मैंने इसलिए किया बताने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु ने इस रूप में आने के लिए कई जगह पर इंडिकेशन दिया हुआ है। सत्ययुग से लेकर, त्रेता से लेकर, द्वापर से लेकर कलियुग की शुरुआत तक अनेक जगह पर ये निर्देश दिया हुआ है, जहाँ तक हमको पता है, जो आचार्यों की कृपा से प्रकट हो गया है। अनंत बार दिया होगा उन्होंने निर्देश। रहस्य एक ही है, प्रेम। प्रेम का रहस्य जानने के लिए कृष्ण भगवान इस रूप में आते हैं। लेकिन जब भी भगवान अपने अंतरंग इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करने के लिए कोई लीला करते हैं, उसके साथ साथ जन कल्याण को नहीं भूलते हैं। इसलिए परम औदार्य मूर्ति बनकर वो आए। हाँ, जब उन्होंने, हम पढ़ते हैं ना कि रास लीला में जो भी आनंद का प्रकट्य हुआ वो सर्वोच्च आनंद है। जीव और भगवान के बीच में प्रेम का अनुभूति का जो सर्वोच्च आनंद है वो रासलीला का आनंद है। रासलीला कोई काम वासना का खेल नहीं है। रासलीला में जो भगवान का अपने भक्त पर प्रेम है, वो सर्वोच्च प्रेम, सर्वोच्च माधुरी रस में भगवान गुप्त रूप में एकांत में सबसे छुपाकर उसको गोपियों के लिए प्रकट करते हैं। और वो भी आप जानकर ये आपको आश्चर्य होगा कि सभी प्रकार की गोपियां उसमें सम्मिलित नहीं थी। जो जो गोपियों के पति थे और उन्होंने पति के साथ संबंध करके उनको बच्चे भी थे, वो लोग केवल तड़पते रहे लेकिन वो रास पे प्रवेश नहीं कर सके। जो लोग इस भावना के परे जा चुके थे वो सब रास में प्रवेश कर गए। इतना वो क्या कहते हैं ना, स्पेसिफिक विशिष्ट रस था जो कृष्ण ने भी ना यशोदा को दिया, ना नंद महाराज को दिया, ना ग्वाल बालों को दिया, ना गायों को दिया, ना किसको दिया, ना मोर को दिया, ना पंछी को दिया। वो सब ब्रजवासी हैं, माधुर्य धाम के वासी हैं, जिनका भगवान भगवान है ये ज्ञान भगवान ने छीन लिया है। ऐसे विशिष्ट जीव है वो, जो ब्रज में जन्म लेने के योग्य थे, फिर भी भगवान ने उनको रास का जो आनंद का अनुभव उनको नहीं मिला। इतना वो प्राइवेट लिमिटेड आनंद था क्योंकि सर्वोच्च था। लेकिन वही आनंद श्री चैतन्य महाप्रभु ने, वो कृष्ण ही है लेकिन इस औदार्य भरे रूप में उन्होंने आम जनता के लिए वो आनंद प्रकाशित कर दिया। हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से उन्होंने रास लीला का सर्वोच्च आनंद, जो जीव के लिए अनुभूति के लिए सर्वोच्च आनंद है, वो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में संकीर्तन आंदोलन में हम सबके लिए पूर्णतः प्रस्तुत कर दिया। क्या वो श्लोक है कि स्थाने स्थाने अस्थाने ना देखिला, ना देखिला स्थाने, नहीं क्या नाम श्लोक है वो, पात्रे अपात्रे ना देखिला, ना देखिला स्थाने अस्थान। मतलब कोई पात्र है नहीं है, योग्य है अयोग्य है, कोई जगह ठीक है नहीं है, गटर के बाजू में है कि उपवन में है, ऐसा कुछ भी नहीं। जहां जहां भी ये हरे कृष्ण महामंत्र होगा वहां वहां रास लीला का आनंद प्रकट होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो भी कैसे, हरे कृष्ण महामंत्र के कैप्सूल में बंद करके सर्वोच्च आनंद सब जनता में बांट लिया उन्होंने। इसलिए हम लोग देखते हैं जब हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन होता है ना, हम जब पीछे पीछे रहते हैं ना, पीछे पीछे हमको नहीं जाना है, हमको नहीं जाना है, पीछे रहते हैं तो हमको इसका आनंद का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जब हम उस कीर्तन के बीच में आते हैं, वो पूरे दिलो जान से भाग लेते हैं। हो सकता है लीडिंग में होंगे या लीड नृत्य करने में होंगे या लीड बजाने में होंगे, लेकिन अगर अंतर्गत सर्कल में होंगे तो उस समय आपको जो अनुभूति होती है वही रास लीला की अनुभूति है। इसलिए हम गोपियां तो नहीं हैं, हम ब्रजवासी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम जहाँ पर भी हैं, जिस जगह में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं या नरक वजह से जगह पर रह रहे हैं या तो अच्छी जगह पर गाँव में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन और नृत्य में दिल से भाग लेते हैं, अपने शरीर का नृत्य जो है किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन केवल भगवान के आनंद के लिए हमारे शरीर का नृत्य करते हैं, शरीर को हिलाते हैं, उसकी जो मूवमेंट्स है, हलचल जो है, वो केवल कृष्ण के आनंद के लिए उस नृत्य को उपयोग करते हैं और भाव से भगवान के नाम को पुकारते हैं, तो उस समय जो गोपियों को एकांत में बीच रात में ब्रह्मा जी के एक रात के समय तक जो दिव्य अनुभूतियाँ हो गई थी वो सब हमें हमारे लिए प्रस्तुत हैं। इसलिए हम सब लोगों को विनती एक ही है कि कलयुग में किसी के साथ कोई योग्यता नहीं है, कोई तपस्या वाला जीव नहीं है, कोई परम ज्ञानी जीव नहीं है, कोई परम दानी जीव नहीं है, कोई परम साधना करने वाला जीव नहीं है, कोई परम चीज़ यहाँ पर होती नहीं है, सब ऐसी ही चीज़ें हैं, लेकिन उस पतित अवस्था में भी इतना आसान तरीका महाप्रभु चैतन्य ने हमको दे दिया है। इसलिए हमारे इस्कॉन में चित्रपट भी ऐसा, वो चित्रपट के पेंटिंग के ऊपर के हिस्से में ऐसे गौलोक में गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं रास लीला, और उसी के नीचे के हिस्से में गौरांग महाप्रभु ऐसे सन्यासी बनकर सब भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ये यही है, वो जो चीज़ है वो वही प्रकट हो गई है, खाली स्थितियाँ बदल गई हैं, उसमें करुणा का अंतर्भाव हो गया है, इसलिए जो एकांत और गोपनीय और गुप्त चीज़ें थी वो अभी सामाजिक प्रकट हो गई है सामाजिक स्तर पर। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ से आवाज आ रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आदि लीला में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी गौरांग महाप्रभु के कृपा का वर्णन करते हैं कि लोचनदास जी का भजन उच्चारण करते हैं, पशु पक्षी झूरे पाषाणे उद्धारे सुन यार गुण गाथा। कैसा लीला है ये महाप्रभु जी का, ये औदारे को हम कैसे समझ सकते हैं? हाँ, हम तो जाकर प्रचार करते हैं तो इंसानों को प्रचार करते हैं ना, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है जो महाप्रभु के अंदर शक्ति है। महाप्रभु ने झारखंड में क्या किया? महाप्रभु ने झारखंड में जब वो आ रहे हैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन के रास्ते पर, बीच में झारखंड आता है, तो उसमें जब कीर्तन किया उन्होंने, आज भी वहां पर पद चिन्ह है हाथियों के, शेरों के, चैतन्य महाप्रभु के और जानवरों के, हिरणों के। जंगल में कोई नहीं है वहां पर, कोई इंसान नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है वहां पर, लेकिन महाप्रभु आवेश में आकर कीर्तन करते जा रहे हैं। तो उस समय हाथी आते हैं, शेर आते हैं, चीता आते हैं, हिरण आते हैं, सभी शत्रु पक्षी वाले जो जानवर हैं सब एकत्र होते हैं और अपने चार पैर वाले पक्षी जो पशु दो पैर ऊपर करके मनुष्य जैसे उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कोई घोड़ा है या कोई हाथी है या कोई शेर है, कोई चित्ता है या कोई हिरण है, सब मनुष्य के आवाज़ में कीर्तन कर रहे हैं, दो हाथ ऊपर करके जैसे हम नाचते हैं वैसे नाच रहे हैं, और उनके भावावेश के कारण, अभी हम चैतन्य महाप्रभु भावावेश में है तो समझ सकते हैं कि महाप्रभु भावावेश में है, तो उनके चरण स्पर्श से पृथ्वी पिघल रही है और महाप्रभु के चरण चिन्ह निर्माण हो रहे हैं, पिघले हुए पृथ्वी पर नृत्य कर रहे हैं तो उनके चरण चिन्ह निर्माण हो रहे हैं, लेकिन वही भावावेश जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ तो उनके भावावेश के वजह से, उनके चरण स्पर्श के वजह से वहां पर भी पृथ्वी पिघलने लगी, इसलिए वहां पर हाथियों के, शेर के, हिरण के सब चरण चिन्ह निर्माण हुए, जंगल के बीच में अभी भी उपस्थित हैं, कितने हजारों चरण चिन्ह होंगे लेकिन सब कालांतर में लुप्त हो गए हैं, कुछ कुछ चिन्ह वहाँ पर झारखंड में अभी भी उपस्थित हैं, हम यात्रा में दर्शन कर सकते हैं अगर गए तभी तो। तो पशु पक्षी झूरे, ये झूरना शब्द है ना, झूरना, इसका इंग्लिश में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। हाँ मराठी में भी आता है ना वो कि त्या व्यक्ति करता ही व्यक्ति खूब झुरली, हाँ खूब झुरत रहली, हाउ टू ट्रांसलेट दैट। ऐसा भाव जो है ना वो पशु और पक्षी में भी चैतन्य महापो निर्माण करते हैं। और पाषाणे विदारे मतलब पत्थर को भी विदीर्ण कर सकते हैं। एक है पिघलाना, विदारे का मतलब क्या है, विदीर्ण कर देना, छिन्न विच्छिन्न कर देना, अस्तित्वहीन कर देना। ये अद्भुत दिव्य करुणा की शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु जीव के अंदर भी प्रस्थापित करते हैं, जिसके वजह से वो भूमि जो है वो प्राणों के पैरों के माध्यम से भी पिघल रही है, क्योंकि भूमि को जो अनुभूति चैतन्य महाप्रभु के चरणों के स्पर्श से हो रही है, जब महाप्रभु भाव में है तो वो भाव को जी प्राप्त हो रही है, वही भाव उनको शेर और हिरण और हाथी के पैरों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, इसलिए वो भी पिघल रही है। तो रिस्पॉन्स किस लिए है, वो पृथ्वी पिघल क्यों रही है, क्योंकि पृथ्वी को वो उस भाव की अनुभूति हो रही है, इसलिए पृथ्वी पिघल रही है। लोचनदास कह रहे हैं पशु पक्षी झूरे पाषाणे विदारे सुन यार गुण गाता, ऐसे महाप्रभु की लीलाएं हैं। ऐसे कृष्णदास कविराज वर्णन कर रहे हैं कि जिनका वर्णन मैं करने जा रहा हूं उनकी लीला इस प्रकार की है कि हम ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, लेकिन प्राणी और पत्थर भी जिससे विदीर्ण हो जाते हैं। इसलिए हे भक्तों, वो कह रहे हैं कि दिल से इनकी कहानी सुनो, दिल से इनकी लीलाओं का श्रवण करो, क्योंकि लीलाओं का श्रवण करने से हम सब लोग इसी जीवन में उद्धार को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं कि इवन आवर स्टोन लाइक हार्ड हार्ट कैन मेल्ट इफ वी हियर द ग्लोरियस पास्ट टाइम्स ऑफ गौरांग महाप्रभु विद लव एंड फेथ। हमारा भी हृदय उस पत्थर की तरह है, वो भूमि में जो पत्थर बने हुए हैं, लेकिन ऐसा पत्थर हृदय भी गौरांग महाप्रभु के इन सुंदर लीलाओं का श्रवण करके जो प्रेम और श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे, सतत भावना से, नित्य रूप से, कंटिन्यूसली, तो हमारा भी हृदय पिघल सकता है। आगे लिखा है कि अगर हमारा हृदय पत्थर जैसा पिघलना है तो क्या करना चाहिए हमको, हमें गौरांग महाप्रभु की कृपा के बिना हमारा हृदय नहीं पिघल सकता है। और गौरांग महाप्रभु की कृपा चाहिए तो क्या जरूरी है, नित्यानंद प्रभु की कृपा होना जरूरी है। और नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे मिलेगी हमको, जब हमें भगवान नाम पर पूरी श्रद्धा होगी। सब लोग जब तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी दिल को टटोल के देखिए कि क्या हमें वास्तव में श्रद्धा है क्या, कि ये नाम का उच्चारण करके और जप करके हमको कृष्ण की अनुभूति होगी और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी और यही नाम हमें गोलोक धाम तक पहुंचाएगा। कभी कभी हमारा नाम जप जो है ना साधना, बड़ी मशीन की तरह बन जाती है, मैकेनिकल हो जाती है। वो मैकेनिकल होना इसका प्रमाण है कि हमें श्रद्धा नहीं है कि हम किसी हीरे को हैंडल कर रहे हैं। अगर हमको पता है कि हमारे हाथ में कोहिनूर हीरा है तो हम इसको गेंद गेंद में खेल खेल के यूज करेंगे थोड़ी, हम लोग उसको कितना उसको संभाल के रखेंगे। अगर हमारे को ये अनुभूति है कि ये पत्थर नहीं है, कोहिनूर हीरा है, तो जब हम जब मैकेनिकली करते हैं तो उसका मतलब क्या है, हमें इस नाम प्रभु का महात्म्य हम भूल चुके हैं या उस समय भूल गए हैं। उस समय हमारी श्रद्धा जो है, चलो ठीक है हम जब कर रहे हैं मैकेनिकली। तो पहली स्टेप जो है, अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा हमको चाहिए तो हमें इस नाम प्रभु पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। उसके आगे की स्थिति है कि नाम प्रभु की श्रद्धा पूर्वक जब हम जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं या कभी ना कभी हमारे आंखों में एक प्रेम के अश्रु बिंदु का निर्माण होना चाहिए। वो हमारे आचार्य भजन में लिखते हैं ना, एक बार चक्षु में अगर एक बिंदु प्रेम का जल दिखाई पड़ा ना, तो नित्यानंद प्रभु पूरे हमारे पर हावी हो जाते हैं, पूरा कृपा कर देते हैं। और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने का और एक मार्ग है, वो है कि सबसे पतित से पतित जीवों के पास पहुंचना है और उनको ये नाम देना है हमको। हाँ उन्होंने क्या किया था, अरे महाप्रभु का अगर गौरव करना है तो जगाए मदाई को जे डिवोटी बनाना पड़ेगा। हाँ इम्पॉसिबल केस है हमारे लिए वो। तो जब कोई व्यक्ति जो एकदम पतित से पतित, पापी से पापी व्यक्ति है, उसके पास जाकर उसको केवल प्रचार का प्रयास भी करता है, तो आप समझ लेना कि आप पर नित्यानंद प्रभु की पूरी कृपा हो गई है। तो इस तीन माध्यम से हम नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा पत्थर दिल जो है एक दिन प्रेम से पिघल सकता है। तो हमारे प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। वो विदेश में गए और कैसे कैसे लोगों से, कैसे कैसे आचरण वाले, कैसे कैसे लोगों से उन्होंने संपर्क किया। शराबी, नशा करने वाले, व्यभिचारी, जुआरी, ऐसे लोगों के बीच में जाकर उन्होंने खुद को कष्ट देते हुए, बुढ़ापे की उम्र में ठंड को सहन करते हुए, जब उन्होंने संकीर्तन का ये संदेश हरिनाम के माध्यम से दिया, तो उन सारे पतित लोगों को उन्होंने शुद्ध वैष्णव के रूपांतरित कर दिया। तो हमारे लिए नित्यानंद प्रभु को उन तक पहुंचने के लिए मार्ग क्या है? श्रील प्रभुपाद के चरणों में शरण लेना। श्रील प्रभुपाद जी उनके 100% प्रतिनिधि हैं। तमाल कृष्ण महाराज कथा बताते हैं कैसे कितने भक्त थे, वो नियमित रूप से मंदिर में चोरी करते थे। भक्त बने थे, पुराने आदतें थी, तो कभी ये गहना चुरा लिया, कभी कुछ चुरा लिया, कभी कुछ चुरा लिया, फिर भाग गए, गायब हो गए, फिर लौट के आते थे। ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने आश्रय दिया, यहां तक कि सन्यास भी दिया, सन्यास लेकर भी वो भाग गए बाद में। तो प्रभुपाद जी, तमाल कृष्ण महाराज बताते थे, हम लोग मैनेजर थे उस समय, हम लोग प्रभुपाद जी को बार बार पूछते थे कि प्रभुपाद जी उनको क्यों आप आश्रय दे रहे हो, वो कितनी बार चोरी करके भाग चुके हैं, अभी उनको सन्यास भी दे रहे आप। तो उनका उत्तर प्रभुपाद देते थे कि नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है उनको हमको बांटना है, और नित्यानंद प्रभु ऐसा भेदभाव नहीं करते कि ये पतित है, सभी पतितों को आश्रय देते हैं। और जब हम पतितों को आश्रय देते हैं तो हम खुद नित्यानंद प्रभु की कृपा को आकर्षित कर रहे हैं अपने लिए। इसलिए हमको जितना भी बार जीव वापस लौट के आएगा, पाप करके पतित होकर फिर भी लौट के आएगा, तो हमको उनको सहारा देना है, उनको प्रचार करना है, उनको कृपा देना है, उनके हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करना है, और यही नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने का सहज मार्ग है। तो अभी मैं आपको चैतन्य महाप्रभु जो वृंदावन में गए, हाँ कितना बजा भी समय कितना हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन जो है ना 48 इयर्स का है, और पूरा जीवन का रहस्य क्या है उनका? ब्रज भूमि का जो प्रेममयी रसमयी लीला है उसका प्रचार करना। जब उनका जन्म हुआ था तो उनका जो भी वो एक टेस्ट किया गया, एक जगह चावल रखे गए, एक जगह पैसे रखे गए, एक जगह भागवत रखा गया, एक और कुछ रखा गया, सोना चांदी रखा गया। तो जाकर उन्होंने ऐसे बालक का था, रेंगता है ना, रेंग रेंग के जाकर पूरा भागवत को उठा लिया। सब लोगों ने तालियां बजाई, वाह अभी ये भागवत का प्रचारक होगा। और भागवत में क्या है? भागवत में जो नौ स्कंद है वो दशम स्कंद तक पहुंचने की तैयारी है, और दशम स्कंद भागवत का केंद्र स्थान है। जो बताना था सुखदेव जी को, परीक्षित जी को, वो था कृष्ण लीला। इन कृष्ण लीला को सुनने के लिए, योग्यता बनाने के लिए नौ स्कंद का निर्माण किया, और बाद में उनको पहुंचाया कृष्ण लीला तक। तो चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, निमाय पंडित ने जब भागवत उठाया, इसका मतलब क्या है? भागवत में जो कृष्ण लीला का वर्णन दिया है उसके प्रचार के लिए, और भागवत में जहाँ कृष्ण लीला हुई है वो जो स्थान है वृंदावन धाम, उसका महिमा प्रकाशित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। यहाँ तक कि गदाधर पंडित और बहुत सारे लोग हैं जो वृंदावन कभी आए नहीं। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि वृंदावन क्यों नहीं आए वो? क्योंकि वृंदावन का रस चैतन्य महाप्रभु के कृपा से हृदय में ग्रहण करके जहाँ जहाँ भी थे वो, वहाँ पर उन्होंने उसका बांटने का प्रयास किया। दैट इज वाई दे नेवर केम टू वृंदावन। और कुछ लोगों को महाप्रभु ने आदेश दिया इसलिए वो वृंदावन आए, जैसे कि रूप सनातन गोस्वामी, छह गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी और बाकी सारे गोस्वामी। लेकिन परमानंद, सरस्वती, ब्रह्मानंद भारती, ये कहाँ वृंदावन आए? इतने सारे भक्तों का वर्ण नाम आया है जगन्नाथपुर के जिला में, लेकिन उसमें से कोई वृंदावन नहीं आए। बहुत गिने चुने लोग वृंदावन में आए, लेकिन महाप्रभु पूरे जीवन भर वृंदावन के भाव का और कृष्ण लीलाओं का, कृष्ण प्रेम का संकीर्तन के माध्यम से प्रचार करते रहे, और पूरे जीवन भर वे तड़पते रहे कि मैं कब वृंदावन जाऊँगा, कब वृंदावन जाऊँगा, कब वृंदावन जाऊँगा। संन्यास लेने के बाद की कथा आई। तो जब भी वृंदावन जाने की बात करते थे तो लोग कहते थे अभी ढोल यात्रा आने वाली है, अभी ढोल यात्रा करके जाओ, उसके बाद बोलेंगे अभी तो ओढ़न षष्ठी आएगी, अभी तो भगवान को गर्म कपड़े पहनाने का उत्सव होगा, आप वो करके जाइए। फिर बोलेंगे अभी मकर संक्रांति आएगी, अभी वो एक उत्सव होगा। जगन्नाथपुरी में तो पूरा उत्सव ही उत्सव है हर 15 दिन के एक बार। फिर कहेंगे अभी तो होली आएगी, होली का लाभ करके जाना, अभी फिर ये होगा, फिर होगा, फिर रामनवमी आएगी, फिर रथ यात्रा करके जाना। ऐसा करके पूरा साल उनको घुमाया, हर बार निकलने का प्रयास कर रहे थे, कुछ ना कुछ उत्सव का बहाना कर रहे हैं। बाद में महाप्रभु बोले मैं जा रहा हूं अभी, लेकिन जब जाने लगे वृंदावन को तो पूरी जनता उनके पीछे, समुन्दर जैसी जनता उनके पीछे। तो सनातन गोस्वामी आए उधर, वो ब्रज में ही थे, अपना जगन्नाथपुरी में थे, आ गए थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से जन समुदाय को लेकर वृंदावन मत जाना, ये वृंदावन जाने का सही तरीका नहीं है। तो लौट गए वो। तो वहां पर कृष्णदास कविराज जी और प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी अपने भक्त के आधीन है, अपने भक्त के आदेश के बाहर नहीं है वो। सनातन गोस्वामी तो उनको अनुग्रह प्राप्त है, उनके शिष्य के जैसे है, लेकिन वो भगवान को बता रहे हैं कि ऐसे मत जाना। भगवान भी एक अपना नम्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके द्वारा सुनकर वापस लौट गए वो। कहते गुप्त रूप में जाइए आप। तो फिर उन्होंने उनकी बहुत चर्चा हुई, किसी को महाप्रभु को छोड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वो जाने की इच्छा कर रहे थे। उनका तड़प देखकर निर्णय लिया कि अभी महाप्रभु को यहाँ पर रोक के रखना अच्छा नहीं है, उनका हृदय विदीर्ण हो रहा है वृंदावन की याद में, जाने की इच्छा से। तो कहा कि आप एक भक्त को ले जाइए, क्योंकि फिर आप ऐसे आकाश में हाथ उठाते हुए जब करते हो और एक हाथ से गिनते हो, वो है ना नव गौरवरम, उसमें लिखा है ना, एक हाथ से गिन रहे हैं, एक हाथ से बोल रहे हैं, हाँ, तो फिर आपके कपड़े कौन पकड़ेगा, और भाव विभोर हो जाएंगे तो आपको खाना कौन खिलाएगा। तो आप एक आचार्य को लेके जाइए, बलभद्र भट्टाचार्य को चुना जाता है, और इतना सारा भाव विभोरता है तो अकेले ही बलभद्र से संभालेंगे नहीं वो। हाउ यू विल एबल टू मैनेज भक्त चैतन्य महाप्रभु, हाँ, कोई अगर मदमत्त अगर इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति होगा तो कितना मुश्किल है संभालना उसको। ये तो महाप्रभु चैतन्य है, भाव विभोर। एक और असिस्टेंट ले जाना, ताकि जब खाना बनाओगे तो ये कपड़े धोएगा, कुछ करेगा असिस्टेंट, दो व्यक्ति चलो ठीक है। और राजमार्ग से मत जाना, ऐसे अननोन मार्ग में जाना, तो किसी को पता नहीं है। तो वो जाते झारखंड के रास्ते से, फिर मैंने बताया आपको वो लीला करते करते पहुँचते हैं, और जब मथुरा में पहुँचते हैं तो एक ब्राह्मण को मिलते हैं, सनोडिया ब्राह्मण, वो कीर्तन करते ना अभी, जहाँ आते ही मथुरा आ गया तो बेहोश हो गए वो पूरा, कि फाइनली मैं पहुंच गया, ब्रजमंडल में पहुंच गया, तो बेहोश हो गए महाप्रभु कैसे मैं करके होश में लाया। होश में आते ही कीर्तन शुरू किया, नाचना शुरू किया, तो सब लोग नाचने लगे, तो ब्राह्मण भी नाच कर रहा है। जब नाच समाप्त हो गया तो महाप्रभु उसको पूछते हैं आप कौन हो, तो कहते मैं सनोडिया ब्राह्मण हूँ, मैं आपके घर में भोजन करना चाहता हूँ। अरे मैं तो वैश्यों का ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण में भी जाति होती है अलग अलग, कोई लोग ब्राह्मणों के लिए विधि करते हैं वो ब्राह्मणों के ब्राह्मण होते हैं, और कुछ लोग क्षत्रियों के ब्राह्मण होते हैं, कुछ लोग वैश्य के ब्राह्मण होते हैं, मैं तो वैश्य का ब्राह्मण हूँ, सनोडिया जाति का हूँ। आपके आप तो महाप्रभु हो, आप तो सरस्वत ब्राह्मण हो, आप तो जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हो, आप मेरे घर में कैसे, आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, बिलो डिग्निटी है। आप मुझे बताइए कि आपके नृत्य में कुछ विशेषता है, महाप्रभु पूछ रहे हैं उनको। तो बातों बातें पता चलता है कि सनोडिया ब्राह्मण माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, क्योंकि आप माधवेंद्रपुरी से संबंधित हो तो मैं जरूर आपके घर में भोजन के लिए आऊँगा। तो महाप्रभु उनके घर में आके भोजन करते हैं, तो सनोडिया ब्राह्मण इतना प्रभावित होता है उनके प्रेम से, इतने प्रभावित होता है कि कहते हैं महाप्रभु जी आप जितना दिन वृंदावन रहोगे मैं आपके साथ चलूँ। बोले चलो, तो कितने हो गए, दो के अभी तीन हो गए, और महाप्रभु चौथे जा रहे हैं अंदर। तो बड़ी लंबी उनकी कथा है महाप्रभु चैतन्य की वृंदावन की यात्रा। तो वो मथुरा से प्रवेश किया उन्होंने, फिर वो बहुत उनका चक्र है एक, फिर चलकर ना वो काम्यवन गए, हाँ, और काम्यवन में जाकर उन्होंने विमल कुंड में स्नान किया, जहाँ पर विमल राजा के कन्याओं का विवाह कृष्ण के साथ हुआ था, वहाँ पर रास रचाया था। एक जगह लिखा है 3 करोड़ कन्याएं थी वो विमल राजा की, सिंधु नरेश, लेकिन गर्ग संहिता में लिखा है कि अनेक करोड़ों थी वो, कितनी करोड़ का वर्णन नहीं है, मैनी 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 करोड़। उनके साथ उन्होंने वहाँ पर रास रचाया था, उनके अश्रु और शरीर के स्वेद बिंदु से वहाँ पर एक विशाल कुंड निर्माण हुआ था, समुद्र समान, जिसका नाम है विमल कुंड। और राजा विमल को सारूप्य मुक्ति भगवान ने दिलाई थी, वहीं के वहीं भगवान के साथ विवाह करके अपनी कन्याओं का, वहीं के वहीं उनके शरीर वैकुंठ का हो गया, वहीं के वहीं वो गौलोक धाम चले गए। तो उस कुंड को नाम विमल राजा का दिया गया जिनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। और तो सबसे बड़ी कन्या थी उसका नाम विमला देवी था, जो विमल राजा की कन्या में प्रधान कन्या थी, भगवान की प्रधान पत्नी बन गई वो। तो उसमें वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया। जितने जितने स्थान है काम्यवन में, सेतुबंध रामेश्वर का दर्शन किया, चरण पहाड़ी का दर्शन किया, आदि बद्री केदार का दर्शन किया, परशुराम के नौ कुंड का दर्शन किया, अनंत स्थानों का दर्शन करते करते भगवान नंदगांव में आ गए। और नंदगांव में आकर अभी ये वर्णन जो है ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में दिया गया है। हाँ, सब लोग सुनना, बड़ा मधुर वर्णन है ये। तहां लीला स्थली देखिला देखी गिला, मतलब तहां मतलब काम्यवन की लीला स्थलियों का दर्शन करके अभी भगवान हमारे नंदीश्वर आ गए हैं। नंदीश्वर देखी प्रेमी होइला विवल, तहां लीला स्थली देखा गिला नंदीश्वर, नंदीश्वर देखी प्रेम होइला विवल, नंदीश्वर देख के ही विवल हो गए प्रेम से। पावन आदि सब कुंडे स्नान को रिया, लोकेर पूछिला पर्वत ऊपर जाइया, मतलब नंदगांव में आने के पहले पावन सरोवर में स्नान किया। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है वहां से। तो फिर लोगों को पूछा कि यहां पर कोई पर्वत है क्या, कोई भगवान की मूर्ति है। लोगों को पूछकर पर्वते ऊपर जाइया, फिर क्या पूछ रहे हैं, किच्चू देव मूर्ति हो या पर्वत ऊपर है, कोई भगवान की मूर्ति है क्या ऊपर उसके, लोक को है मूर्ति हो या गोफार भीतोरे। लोग बता रहे हैं कि उधर एक ऊपर गुफा है, उसके अंदर एक देव की मूर्ति है, उधर आप जाइए। फिर महाप्रभु चैतन्य जो है वो नंदीश्वर चढ़ के गए हैं, वो पर्वत के ऊपर एक गुफा थी उसके अंदर प्रवेश किया उन्होंने। और दुई दिखे माता पिता पुष्ट कलेवर, दो दिखे माने दो बाजू में माता पिता का विग्रह था, बहुत पुष्ट कलेवर था उसका। मध्य एक शिशु हो या त्रिभंग सुंदर, उनके बीच में एक सुंदर शिशु त्रिभंग सुंदर विराजमान, श्याम सुंदर जी। सुनी महाप्रभु मोने आनंद पाईया, तीन मूर्ति देखी लो सही गोफा उगाड़िया। ये सब वर्णन सुन रहे पहले, वो ऊपर जाइए, ये दोनों पुष्ट कलेवर है, उसके बीच में सुंदर मूर्ति है, ये सुनकर वो ऊपर गए हैं, गुफा का दरवाजा खुला है और उन्होंने बहुत आनंद का प्राप्ति किया है, गुफा को खोल का दर्शन किया है। ब्रजेंद्र ब्रजेश्वरीर केलो दर चरण वंदन, ब्रजेश्वरी यानी यशोदा, ब्रजेश्वरी यानी नंद महाराज, दोनों का उन्होंने चरण वंदन किया है। और प्रेमावेशे कृष्णेर कैला सर्वांग दर्शन, ऐसे कहते हैं कृष्ण को देखकर उन्होंने ऐसे भावविभोर हो गए कि कृष्ण के जैसे कभी हमारा प्रिय भक्ति मिलता है ना, कैसे हम लोग उसको सब शरीर को हाथ लगाते हैं ऐसे। हाँ, जब बालक अपने माँ को मिलता है, माँ अपने बालक को मिलता है बहुत दिन के बाद में, तो कैसे माँ उसको सब शरीर को सब अंगों को हाथ लगाती, वैसे महाप्रभु चैतन्य ने कृष्ण के विग्रह के सारे अंगों को ऐसे हाथ लगाए जैसे अपने भाई हो या स्वयं। तो ब्रजवासी लोग देख रहे हैं कि इतना दिव्य स्वर्ण प्रकाशमान व्यक्ति भगवान के प्रेम के आवेश में कीर्तन करते करते ऊपर जा रहा है, तो सब उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब देखते हैं और जिस प्रकार से अंदर एकांत में गौरांग महाप्रभु यशोदा माई के विग्रह से बात कर रहे थे, जिस प्रकार से कृष्ण के विग्रह को हाथ लगा रहे थे, तो सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं ये कृष्ण होंगे, क्योंकि ऐसे क्या कहते हैं इंटीमेटली, ऐसे क्लोजनेस से और कोई व्यक्ति यशोदा से बात नहीं कर सकता है, स्वयं कृष्ण ही कर सकते हैं। तो सब लोग ने पहचान लिया कि कृष्ण है। प्रेमावेशे कृष्ण ने केला सर्वांग दर्शन, सुबह दिन प्रेमावेशे नित्य गीत कोयला, तहां होते महाप्रभु खदीर बन जाइला। तो उस प्रेम से आवेश होकर भगवान ने वहां पर बहुत धुआंधार कीर्तन किया, सब ब्रजवासियों ने उसका आनंद लिया और कृष्ण को दोबारा एक बार ब्रज में आते हुए देखकर सबने आनंद का अनुभव किया। फिर उसके बाद भगवान खदीर बन चले गए। खदीरबन के बाद में, खदीरबन वो जगह है जहाँ पर बकासुर का वध हुआ था, जो उपनंद बाबा का वो जगह है, गांव है, उपनंद बाबा की जगह है, वहाँ पर कत्था के वृक्ष थे इसलिए उसका नाम खदीरबन पड़ा हुआ है। और वहाँ पर उपनंद बाबा की गायें रहती थी, कृष्ण अपने गायों को पानी पिलाते थे। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के लीलाओं का याद करते करते वो वहाँ से आगे चले गए। और आपको आश्चर्य होगा, वहीं से सुनकर गोवर्धन का रास्ता है आज भी, तो महाप्रभु नाश करते करते गोवर्धन में आए। जब गोवर्धन में आए तो उनको कृष्ण का बाल रूप का दर्शन हुआ, तो तुरंत महाप्रभु गोवर्धन के तलहटी में बेहोश हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौरांगा। इस तरह से भाव विभोर होकर बेहोश होते होते भगवान सबसे पूछने लगे। एक बात बताना भूल गया मैं आपको कि एक आनंद घन गोस्वामी थे जो 1285 में उन्होंने ये जो गुफा के अंदर विग्रह थे ना, 3 विग्रह, उनकी पूजा अर्चना शुरू किया था। आज के नंदगांव के गोस्वामी जो हैं उनके पूर्वज हैं आनंद घन गोस्वामी, और ये आनंद घन गोस्वामी 1285 से उन्होंने आरंभ किया था। महाप्रभु चैतन्य तो 1510 में आए थे। तो कहते हैं कि आनंद घन बाबा के जो वंशज थे उनके घर में चैतन्य महाप्रभु ने भोजन किया हुआ है, उसका उनके इतिहास में उल्लेख है। उसके बाद महाप्रभु गोवर्धन में चले गए। उसके बाद महाप्रभु एई मत महाप्रभु नाचीते नाचीते आरिटक रामी आसी भाई हैलो अचंबित। कहते हैं वह भाव में आ गए थे, वो प्रेम से नाचते हुए भाव विभोर होकर वो वहां तक आए। लेकिन अरिष्टग्राम आने के बाद वो बाह्य चेतना में आए। ही केम टू एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस और सबको पूछने लगे। आरिटे राधा कुंडे वार्ता पूछे लोकस्था ने, केहो नाही कहे संगेर ब्राह्मण ना जाने। हाँ, सबको पूछ रहे हैं कि राधा कुंड कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है, कोई लोकल ब्रजवासी बता नहीं पा रहा है। हाँ, आज भी यही स्थिति है। जिस स्थान में जो ब्रजवासी रहते हैं उनको ही अपने स्थान की कथा पता नहीं है, ये आज की स्थिति है। एक बार मैंने हमारे एक स्टाफ को बताया था जो छाता में रहते थे, मैंने कहा कि आपको एक ही मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप मुझे छाता की कहानी बताइए बस। 6 महीने तक उसने गांव के सभी बुजुर्गों को छान मारा, जितने दाढ़ी वाले जितने बुजुर्ग 90 साल के सबको पूछा जाके। छाता के शहर में और गांव में जितने परिचित थे उसमें से एक भी व्यक्ति को छाता में क्या लीला हुई पता नहीं। फिर 6 महीने के बाद मैंने उसको छाता की लीला बताई। उसके बाद में वो ब्रजवासी ने हमारे साथ सब जगह यात्रा किया। वो कह रहे हैं कि हमें हमारे गांव की कथा प्राप्त पता नहीं है, तो हमें गोवर्धन की और वो दाऊ जी की और उसकी कथा कैसे पता चलेगी, तो जाते ही नहीं कहीं वहाँ पर। महाप्रभु चैतन्य जब आ रहे हैं तो भी यही हाल है, देखिए आप। क्यों? क्योंकि धाम के प्रति अनिष्ठा, धाम के प्रति कोई निष्ठा ही नहीं है। धाम में रह रहे धामवासी है, धाम में जन्म प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी फोकस जो है वो चरितार्थ पर है, धाम पर नहीं है, धाम पर निष्ठा ही नहीं है। तो जिस धाम पर हमें निष्ठा नहीं है वो धाम हमारे लिए अपनी लीला प्रकट कैसे करेगा। इसलिए मैं जब भी आता हूँ ना यहाँ पर नासिक में इस बात का जरूर उल्लेख करता हूँ कि आप सब लोग भी तीर्थ में रहते हैं, प्रभु रामचंद्र यहाँ पर आए हैं, प्रभु रामचंद्र यहाँ पर रहे हैं, यहाँ से कई लीलाएँ हुई हैं, यहाँ पर क्या नहीं हुआ, इतना सुंदर लीलाएँ यहाँ पर हुई है। लेकिन जब हम यहाँ पर बस जाते हैं तो स्नान करना होगा तो हरिद्वार जाते हैं, और हरिद्वार के लोग स्नान करना होगा तो इधर आते या और कहीं साउथ में चले जाते। ये शास्त्र में लिखा गया है। कलयुग का ऐसा प्रभाव होगा कि जहां पर लोग रहेंगे गंगा किनारे भी रहते रहेंगे तो स्नान करने के लिए कहीं और साउथ इंडिया में जाएंगे। उत्तरकाशी में मैं जाता हूं बहुत बार, तो कई दुकानदारों को जिनका दुकान गंगा के किनारे पे है, लिटरली किनारे पे, एक स्टेप उतरेंगे तो गंगा। मैंने पूछा कब स्नान किया आपने, तो कहीं 2-3 साल पहले किया होगा। आप तीर्थ वगैरह करते हैं? हाँ, जाते ना हम लोग, जाते साउथ इंडिया जाते, रामेश्वर जाके आए, वो चार धाम सब जाके आए, सब पता नहीं। क्योंकि जहां पर रह रहे हैं उसकी निष्ठा कम है। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ कि कभी छुट्टी में, कभी संडे हो, कभी हॉलीडे हो, कोई फेस्टिवल हो, जरूर जाना और यहाँ के सभी तीर्थों का दर्शन करके आना। क्योंकि आप लोग जब यहाँ रहकर अपने ही तीर्थों में जाएंगे तो आपका निवास होने की वजह से बड़ी प्रचंड कृपा आपके अंदर प्रवेश करेगी, और पूरा लाभ जो तीर्थ में रहने का है, आपका जन्म से या बाहर से आकर रहने का जो लाभ है वो पूरा आपको प्राप्त होगा और इस जीवन को सिद्ध करेगा। हाँ, जीवन को परिपूर्ण करेगा वो। तो देखिए आप, परम भगवान महाप्रभु चैतन्य आकर राधा कुंड जैसे सर्वोच्च स्थान में इंक्वायरी कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं केहो नहीं कहे, कोई नहीं कह सका उनको। फिर उन्होंने क्या किया, संगेर ब्राह्मण को पूछा, वे तुम सनोड़िया ब्राह्मण हो, तुमको पता होगा, संगेर ब्राह्मण भी ना जाने, इवन द अकंपनिंग ब्राह्मण कुड नॉट टेल। फिर तीर्थ लुप्त जाने प्रभु सर्वज्ञ भगवान, भगवान समझ गए कि ये पवित्र तीर्थ जो है वो लुप्त हो गया है, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, उनका अवतार का एक कार्य भी है कि खोए हुए तीर्थों को जागृत करना। तो भगवान ना वहां पर एक स्थान पर जाके बैठ गए। देखो उसका क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य वने भ्रमण कोरिया, एई तमाल एर तोले बोशिलो आशिया। वो तमाल के तले बैठ गए, उन्होंने ध्यान किया वहां बैठकर, और उनके ध्यान में उनको राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन हुआ। जो आंखें खुली तो वो स्थान उनके बिल्कुल आंखों के सामने था, लेकिन कैसा था, कीचड़ सा बना हुआ था, दो ऐसे कीचड़ के डबके थे, उसके थोड़ा पानी था और अधिकतर कीचड़ था। तो वहां से सीधा छलांग लगाई उन्होंने और दो कीचड़ के जो गड्ढे थे उसके अंदर जंप मारा उन्होंने, और हरि बोल हरि बोल बोलियो ऐसे करके नृत्य करने लगे वो। तो सभी जो लोकल धामवासी थे वो अचंभित हो गए। दुई धान्य क्षेत्र अल्प जले कई लो स्थान, अल्प जल थोड़ा सा जल था उसमें, धान्य क्षेत्र था मतलब खेती बाड़ी थी उधर, थोड़ा अल्प जल बीच में थे, उसमें कई लो स्थान। देखी सब ग्राम्य लोकेर विस्मय होइला मन, ये सब देखकर सबके मन में बहुत विस्मय हो गया, अरे क्या हो गया ये अचानक, ये गोरा गोरा सुंदर सुंदर तेज पुंज तेजस्वी ब्राह्मण क्या कर रहा है। प्रभु सब प्रम प्रेमे करे राधा कुंडेर स्नान, प्रभु ने फिर प्रेम से राधा कुंड में स्नान किया, सबको बताया कि राधा कुंड श्याम कुंड यही है। और प्रभु प्रेमे कोरे राधा कुंडेर स्तवन, उन्होंने उनका गौरव करना शुरू किया। क्या बताया प्रभु ने, देखो सब गोपी हैते राधा कृष्णेर प्रेयसी, तैचे राधा क्रिंड प्रिय प्रिय रस रसी। जैसे सभी गोपियों में राधा कृष्ण को बहुत प्रिय है, वैसे ही ये सभी तीर्थ स्थानों में कृष्ण को राधा कुंड प्रिय है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज में आकर सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट किया उन्होंने। फिर रघुनाथ गोस्वामी को आदेश दिया उन्होंने कि इसका आप जीर्णोद्धार करो। फिर उसके बाद में बहुत लंबी विस्तार की कथा है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने कैसे चमत्कारिक दृष्टि से आज का जो आपके सामने राधा कुंड श्याम कुंड है वो निर्माण किया उन्होंने। उसके बाद महाप्रभु वृंदावन गए, और वृंदावन में गए तो वहाँ पर बस गए। अभी तक तो खबर यात्रा ही कर रहे हैं, मथुरा से काम्यवन, काम्यवन से पावन सरोवर नंदगांव, नंदगांव से खदीरबन, वो रास्ते से आकर पूरा गोवर्धन पूरा दर्शन करके राधा कुंड श्याम कुंड उसका प्राकट्य किया उन्होंने, और वहाँ से वो वृंदावन चले गए। जब वृंदावन चले गए तो बस गए वहाँ पर, कहाँ बस गए बताइए, यस इमली तला इस स्थान पर बस गए वो। लेकिन उनका मध्यान्ह करो अक्रूरे करे भोजन, दोपहर में वो अक्रूर घाट में भोजन करते थे, जहाँ पर अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर जब बाहर गए तो वो वृंदावन का बॉर्डर है, वहाँ से मथुरा शुरू होता है, तो वहाँ पर वो दोपहर का भोजन करते थे और जप जो है वो आकर इमली तला में करते थे। अभी विशेष बात यह है कि इमली तला जो है वो यमुना किनारे है वृंदावन में आज भी, तो यमुना जी को निहारते हुए वहाँ बैठकर चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जप करते थे। और कैसा जप करना चाहिए उन्होंने वहाँ पर दिखाया है। जब वो भाव विभोर होकर जप करते थे तो उनका गौर वर्ण जो है वो श्याम सुंदर वर्ण होता था। जब राधा रानी को उन्होंने बताया था कि मैं आऊँगा इस रूप में, तो राधा रानी ने कहा था कि जब आप मेरा भाव लेकर आओगे तो मैं अभी से देख रही हूँ कि तुम्हारे क्या अवस्था होगी, तुम पेड़ की शाखाओं से जमीन पर गिरोगे, कांटों में गिरोगे, पत्थर पर गिरोगे, जमुना जी में गिरोगे, अपने आप को जख्मी करोगे, मुझे विचार भी सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं जब तुम जिस भी समय इस भाव लेकर आने का प्रयास करोगे जन्म लोगे तो मैं मेरी कांति से आपको ढक दूंगी। इसलिए एक और कारण उनका है कि वो गौर वर्ण क्यों है, स्वर्ण वर्ण क्यों है, क्योंकि वो राधा रानी की कांति है जो राधा रानी ने उनको अर्पण कर दी है। तो अभी आप सोचिए कौन है चैतन्य महाप्रभु, स बाह्य अभ्यंतर राधा रानी, अंदर राधा रानी का भाव है और बाहर से राधा रानी का ही कवच है उनके अंदर, और केवल नाम के लिए कृष्ण है लेकिन राधा ही बन चुके हैं पूरी तरह से। तो गौरांग महाप्रभु का ये जो दर्शन है ये श्री राधा रानी की परम कृपा है हमारे ऊपर। हाँ, तो दर्शन के बाद कंटिन्यू करना है कि बंद करना है? कंटिन्यू करेंगे, इवनिंग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर बैठकर हमें जप कैसे करना है वो सिखाया है। 2 महीने वहाँ पर रहकर उन्होंने जो आज हम कहते हैं ना हरिनाम सेमिनार्स, वो उन्होंने वहाँ पर कंडक्ट किए हैं इमली तला में। सवेरे के समय जप करते थे और ब्लू होते थे, और दिन के दिन में सब ब्रजवासियों को हरिनाम के विषय में जप कैसे करना है वो तांत्रिक दृष्टि से समझाते थे उनको। लोगों के मन में जो वहम थे, जो क्या कहते हैं ना उसको, ब्लाइंड फेथ थे, कृष्ण आने वाले हैं जमुना किनारे में, वो फिशिंग कर रहे हैं वहाँ पर, कालिया प्रकट हो गया है, ये सब सारे वहम थे वो सब नष्ट कर दिए उन्होंने। वहाँ पर एक राजपूत आया, वो भी उनके चरण में आया, तो भी 4 हो गए, बल्लभद्र भट्टाचार्य, एक असिस्टेंट सनोड़िया ब्राह्मण और राजपूत। और आगे की कथा हम आपको शाम को बताएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।